My friend and your friend, and my brother and your brother, good friend and brother, Brother Branham, at this time, God bless you.
धन्यवाद भाई नेविल। सुप्रभात दोस्तों, आज सुबह फिर से यहाँ आराधना भवन में होना अच्छा लग रहा है, जिससे कि प्रभु यीशु की आराधना करें। हम में से बहुतों की आज दूसरी सभा है। हम आज प्रातः यहाँ पर थे और प्रभु ने हमारे साथ अद्भुत रीति से भेंट की, और मैं कुछ मिनटों के लिए बस लोगों से बात करने के लिए आया था, और यहाँ तक अपेक्षा भी नहीं की थी कि मेरे पास कुछ लिखा हुआ हो। और पहली बात, आप जानते हैं, मुझे प्रचार करना था और हमारे पास एक बहुत अच्छा समय था, और हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अब हम क्षमा चाहते हैं, इस छोटे से भवन में हमारे पास सभी लोगों के बैठने के लिए स्थान नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें इस तरह से खड़ा रहना पड़ रहा है। मुझे ये पसंद नहीं है, बहुत ही बुरी बात है, लेकिन इस समय हम इतना ही कर सकते हैं। सो हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा समय तक नहीं रोके रखें। बस आप सबको एक ईस्टर की शुभकामनाएं दूंगा, और हम आज सुबह बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, जैसे बताया गया था, और जो भी हम करने जा रहे हैं, प्रभु सारी बातों पर उसकी आशीष को जोड़े, क्योंकि इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर हमसे भेंट करे और हमें आशीष दे। अब आज रात की सभा बपतिस्मा की सभा है, और आप जिन्होंने अब तक पानी में डुबाने के द्वारा बपतिस्मा नहीं लिया है और इसे लेने की इच्छा रखते हैं, सो हम आज रात यहां आपको आमंत्रित करते हैं। तैयार होकर आएं और अपने बपतिस्मे के वस्त्रों को लेकर आएं, क्योंकि आज रात हम यहां एक महान सभा की अपेक्षा करते हैं, बपतिस्मे की सभा में। और अब आज ये ईस्टर है, और संभवत है आप में से बहुतों की आपकी इसी समय पर खुद की सभाएं होती हैं, या सूर्योदय की सभा के लिए यहाँ पर होते हैं। हम आपको यहाँ पर पाकर बहुत खुश हैं, इस भाग आज हमारी सभा के इस भाग में। लेकिन एक छोटे ईस्टर पर जारी रखते हुए बोलूंगा, आज सुबह हम आपका ध्यान संत यूहन्ना के 21वें अध्याय और तीसरे और चौथे अध्याय की ओर दिलाना चाहते हैं, और बाद में संत मरकुस या संत लूका, मेरा मतलब 20 या 49 अध्याय, बस कुछ क्षण के लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहले संत यूहन्ना 21। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर तुरंत नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर जब होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु है। होने पाए प्रभु उसके वचन के इस भाग पर आशीष को जोड़े। फिर लूका में 49वां अध्याय और 27वें वचन से आरंभ करते हुए, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। और इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह थोड़ा आगे बढ़ा चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया, और जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और इसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। क्या ही फर्क है, एक जगह वे उसे नहीं जान पाए और इस जगह उन्होंने उसे जान लिया उसके कुछ तो करने के द्वारा, और वो उनकी आंखों से छिप गया। और उन्होंने आकर और उन्होंने एक दूसरे से कहा, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था? अब हम अपने सिरों को बस कुछ क्षण के लिए झुकाएंगे। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको इस सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं, इस महान मौके के लिए जो हमारे पास है, ताकि मसीह की उपस्थिति में पुनरुत्थान पर एक साथ इकट्ठा हो सकें, इस दिव्य संगति के पूरे आश्वासन को पाकर उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के भागी होने के लिए, दुनिया की चीजों के लिए उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए और अनंत जीवन में फिर से नए बनकर जी उठे, और अब यह आशा हमारे अंदर बनी रहती है। और पुराने समय के भविष्यवक्ता के जैसे हम कहते हैं, हम जानते हैं हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, हमेशा के लिए जीवित है, ऊंचे पर महाराजा के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ एक सच्चा महायाजक, वो एक जो परीक्षाओं से परखा गया और जो हमारे अपराध को अंगीकार करने पर पिछवाई को कर सकता है। हम आपका इसके लिए कैसे धन्यवाद करें। हमारे हृदय अंदर ही अंदर जल उठते हैं जब हम सोचते हैं कि हमारे पास एक है जो आज हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, आज उस महान और सर्वसामर्थी परमेश्वर की उपस्थिति में है। वो मरा नहीं है लेकिन जीवित है और उसकी उपस्थिति में बैठा हुआ है और वो हर कहीं मौजूद है, हर कहीं पर है, सारी बातों को जानता है, सामर्थ्य में सर्वव्यापी है, सारी बातों को कर सकता है, सारी बातों को जानता है और वो हमेशा उपस्थित रहता है। और हम उसका कैसे धन्यवाद करें इस सर्वोच्च और महिमामय सच्चाई के लिए जिसे हमने आज हमारे हृदयों में थाम कर रखा है। इसका बहुत ही अधिक आनंद लेता हूँ। और वहाँ पर हम हमारे दुर्बलता को अनुभव करने के द्वारा उसे छू सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए दुख उठाया, हमारी बीमारी को कलवरी पर सहन कर रहा था। हम इसके लिए बहुत ही आनंदित हैं आज इसे जानकर, और ये जानकर सीधा आश्वासन जो आज हमारे पास अभी है वो जीवित है, हमारे लिए बात करता है, हमें प्रेम करता है। क्या आप उसकी उपस्थिति को लगातार आज हमारे साथ बने नहीं रहने देंगे, इसे एक वास्तविक ईस्टर बनाएंगे? और परमेश्वर, वे लोग जो आज सुबह आपको नहीं जानते हैं, जो अनजान हैं, वे जो मसीह को पुनरुत्थान में नहीं जानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि वो पूरी भव्य सामर्थ्य में आकर उनके जीवन के पापों को उठा लेगा और उसके बदले में उन्हें परमेश्वर की भली चीजों को दे देगा। प्रभु इसे प्रदान करें। होने पाए कि आज रात का दिन इसे उत्पन्न करे उस हर एक अविश्वासी के लिए जो दैविक उपस्थिति में हो। देश के सारे स्थानों की सभाओं को आशीष देना जो इस महान यादगार में आज इस मरणोत्सव में रखी गई है। अब अपने निष्फल सेवक की सहायता करें प्रभु, जैसे खुद को हम आपको सौंपते हैं। हर एक को आशीष देना जो यहाँ पर है, और होने पाए जब सभा समाप्त हो हम उसी तरह से कहें जैसे उन्होंने इमाउस पर उस दिन कहा। क्या हमारे हृदय भीतर ही भीतर जल नहीं रहे थे जब उसने हमारे साथ मार्ग में बात की? इसे प्रदान करे प्रभु, क्योंकि हम इसे उसके नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर के महान उद्धार की अनंत योजना, कैसे यह पहले बीते समय में हुआ जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसके खुद के लिए वो एक आराधना करने वाला हो। उसने उसे उसी तरह से बनाया जो वो कर सके। उसके पास आराधना करने की एक इच्छा होगी और सारे युगों में मनुष्य की लालसा रही है कि वो पीछे उस पर्दे की ओर देखे जो उसके, और वो कहां पर जा रहा है, बीच में लटकता है। 603 एडी में जब इंग्लैंड के राजा ने संत अगोस्टिन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया गया, एक रात बड़ी आग की भट्टी के पास बैठा हुआ था। जब वो उसके साथ मसीह के बारे में बात कर रहा था, एक छोटी सी चिड़िया उजाले में उड़ रही थी। थोड़े समय तक वो इधर उधर उड़ती रही और उड़ती हुई चली गई। और संत अगोस्टिन ने राजा से कहा, उसने कहा वो कहाँ से आया और वो कहाँ चला गया? उसने कहा ये इसी तरह से है कि हर एक मनुष्य जो इस संसार में आता है वो यहाँ आकर एक छोटे से विवेक की चेतनाओं में चलता है, वास्तव में नहीं जानता है वो कहाँ से आया है। और केवल एक ही किताब है जो उसे बता सकती है वो कहाँ जा रहा है, और वो है बाइबल। और इस बात पर उस राजा का परिवर्तन हो गया था और उसने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया। और अगली सुबह को वो और उसके सारे घराने ने प्रभु के नाम में बपतिस्मा लिया था। मनुष्य अपनी स्वाभाविक अवस्था में वो आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता है, वे आत्मिक तौर से परखे जाते हैं। और अब मैं चाहता हूँ आप जितना नजदीक से सुन सकते हैं सुने। मैं जानता हूँ यह कठिन है, आप खड़े हुए हैं और ये स्थान लोगों से इस तरह से भरा हुआ है, लेकिन वचन को सुनने की कोशिश करें उन लोगों के खातिर जो बीमार हैं और वे जो पापी हैं, विशेषकर आज सुबह उन लोगों के लिए वे जो पापी हैं और चाहते हैं कि शांति मिले। गुलामी से आजादी की दावेदारी को हस्ताक्षर किया जा चुका है, आप आजाद हैं और बस आप इसे जानते भी नहीं हैं लेकिन इससे पहले विश्वास के पास एक दैविक विश्राम का स्थान होना अवश्य है। यदि आपका परमेश्वर में विश्वास है, आपके पास कुछ दैविक विश्राम के स्थान का होना है, ताकि इसे स्थान में रखें, और इससे अच्छा कोई स्थान नहीं है और कोई दूसरा दैविक तरीका नहीं है, केवल परमेश्वर के वचन के जरिए से ही है। और हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास सीधे परमेश्वर के लिखित वचन के ऊपर विश्राम करे। अब मनुष्य उसके शारीरिक अवस्था में और उसकी बुद्धि की धारणा में वो हमेशा ही अपने आप को परमेश्वर से दूर खींचने की कोशिश करता है। ऐसा आरंभ से होता आ रहा है कि मनुष्य दूसरी ओर देखने की लालसा रखता है, लेकिन वो एक बंदी गृह में बंधा हुआ रहता है। कभी कभी मनुष्य के रीति रिवाज उसे वहाँ पर डाल देते हैं, जो वे रीति रिवाज अलग अलग तरीकों और मूल भाव से सिखाते हैं कि कैसे आराधना करना है, और वो मनुष्य को बंधुआई के नीचे डालते हैं, उसके रीति रिवाजों के नीचे डालते हैं, और ऐसा दुनिया के आरंभ से होता आ रहा है। यह इसी तरह होता आया है और वो बंदी गृहों में बंद हो गया है। लेकिन मनुष्य हमेशा दूसरी ओर देखने की लालसा रखता है, और कोई भी छोटी सी बात जरा सी भी अलौकिक दिखाई देती है, मानव जाति उसके लिए दौड़ने लगेगी, क्योंकि सीमा के उस ओर कुछ एक किस्म की प्रतिज्ञा है, बस मार्ग के उस ओर, और कौन सी चीज उसे ये करने को तैयार करती है, वो ये है, क्योंकि वो उसके बनाने वाले के स्वरूप में रचा गया है, जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। उसे बनाया गया था कि वो एक परमेश्वर का आराधना करने वाला हो, और उसे अवश्य ही किसी स्थान को पाना है जिससे कि उस भावना को बाहर ला सके। और हमारा आज यहाँ यही उद्देश्य है, इस ईस्टर की सुबह आपके लिए वास्तविक सच्चाई के सुसमाचार को सामने लाएं। किसी के अंदर कुछ भी नहीं है, किसी भी संस्था में, किसी भी बुनियाद में, केवल उस सुसमाचार में है, जो बाइबल की साधारण सी सच्चाइयां हैं। मैं विश्वास करता हूं कि यह परमेश्वर का लिखित वचन है। मैं इसे मेरे पूरे प्राण से, हृदय, मन और अस्तित्व से विश्वास करता हूं, और यही है जिसे मैं इसे सामने रखना चाहता हूं। आज यहां हमारे इस छोटे से शहर को इस महान अद्भुत बात में, जिसे मैंने पिछले 10 सालों से सारी दुनिया में जगह लेते हुए देखा है। हमने बहुत बार कोशिश की कि सभाओं को रखें, शहर में चंगाई की सभाओं को रखें, इसलिए नहीं क्योंकि मैं सोचता हूं कि मेरा यहां पर कोई मित्र नहीं है, क्योंकि मेरे मित्र हैं और आप मेरे मित्र हो और मैं आपसे प्रेम करता हूं। लेकिन यह तो विचार है कि यह घर है जहां मुझे लाया गया था, यह मेरा स्थान है जहां हर एक जन मुझे यहां पर जानता है, और एक तरह से यह इसे कठिन बनाता है, क्योंकि वचन इसी बात को कहता है कि अपने ही नगर में या अपने ही लोगों के बीच और इत्यादि, यह बहुत ही कठिन होता है कि सुसमाचार को सामने रखा जाए। ऐसा सारे युगों में होता आया है और अब इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज सुबह हमसे सभा को करवाने जा रहा है, जैसे कि हमने करने के लिए उससे मांगा है। अब मैं विश्वास करता हूं कि वो इसे करेगा। इसलिए यदि वो अपनी महान उपस्थिति और अपनी स्वर सामर्थ के द्वारा करेगा, इसका मतलब है कि वो हमारे मध्य में है। और क्या ही अद्भुत समय है एक ईस्टर की सुबह पर पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को यहाँ मनुष्य के बीच में चलते हुए देखना, एक अचूक किनाई, पक्का प्रमाण कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और यही मेरा दावा है, जिसका मैं दावा करता रहा हूँ कि यीशु मसीह मरा नहीं है, वो जीवित है, पूरी तरह से जीवित, और जीवित रहेगा, हमेशा के लिए जीवित है। और यदि परमेश्वर केवल हमसे उसके अनुग्रह के द्वारा ऐसा होने दे, मैं विश्वास करता हूँ, जिसे आज सुबह हम आपको साबित कर सकते हैं बिना किसी संदेह की छाया में, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, कि यीशु वास्तव में मुर्दों में से जी उठा है और ठीक यहाँ पर आज इस इमारत में रह रहा है, ठीक यहाँ पर हमारे साथ है, संसार के अंत तक उसने इसकी प्रतिज्ञा की है। अब मनुष्य ने अपने शारीरिक रीति में उसने जो पहले बनाया, हम ध्यान देंगे कि लोग अपने अच्छे उद्देश्यों के साथ एक संप्रदाय के लिए सुसमाचार को लाने की कोशिश करते हैं। वे कहने की कोशिश करते हैं, अच्छा तो हम कलीसिया जाएंगे, ये अच्छी बात है, और अच्छे उद्देश्यों के साथ कहते हैं, हमारे पास एक संप्रदाय की घोषणा करने का यह तरीका होगा, हम इन प्रार्थनाओं को बोलेंगे। हम कुछ ऐसी ऐसी चीज को करेंगे, लेकिन मसीह का पुनरुत्थान संप्रदाय के शामिल होने से बढ़कर है, एक संस्था से बढ़कर है। भले ही वे जितने अच्छे हो सकते हैं वे होंगे और उनके उद्देश्य अच्छे हैं, लेकिन यह पुनरुत्थित हुआ मसीह नहीं है। और यही वो मुख्य बात है जिसके पीछे हम जा रहे हैं। आज सुबह वो अचूक प्रमाण है कि यीशु मृत्यु से जी उठा है। अब जैसे हमारे लेख कहते हैं, वे उसे नहीं जान पाए, और आज भी यही बात है। लेकिन मनुष्य ने उसे जानने की लालसा रखी। उन सारे युग में से होते हुए उन्होंने उसे जानने की लालसा रखी। और हमारा आज सुबह का विषय, हमारा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सुबह की सभा में हम वहाँ देखते हैं कि अय्यूब, जब वो बहुत बूढ़ा था और बहुत पहले शुरू में आरंभ में उसने उसके सृष्टिकर्ता को जानने की लालसा रखी। दूसरे शब्दों में उसने कहा, यदि मैं जाकर और उसके दरवाजे पर खटखटा सकता और उससे बात कर सकता। किस तरह मनुष्य के हृदय ने ऐसी बातों की लालसा को रखा। और आज 4000 वर्षों के बाद, तकरीबन 5000 वर्षों से ज्यादा, कितना अधिक मनुष्य का हृदय उसके दरवाजे पर जाने की लालसा रखता है, उसके साथ परिचित हुआ है। और फिर लोग रीति रिवाजों के द्वारा उन्होंने महान वचन की बुनियादी सच्चाइयों को देखने से अंधा कर दिया है। अब यीशु ने उसी बात को कहा जब वो धरती पर था। उसने कहा, तुम अंधे अंधे की अगुवाई करते हो। उसने कहा, यदि अंधा अंधे की अगुवाई करता है तो क्या वे सब खड्डे में नहीं गिरेंगे? अब मसीही और धार्मिक शिक्षकों के लिए अंधा उच्चारण करते हुए देखा, परमेश्वर के पास खुद को लोगों पर प्रकट करने का एक तरीका है और लोगों पर खुद को ज्ञात करवाने का तरीका है। लेकिन बहुत सी बार रीति रिवाज लोगों को बंद कर देते हैं, इससे पहले परमेश्वर को उनके अंदर जाने का एक मौका मिल सके कि खुद को प्रकट करे। समझे? आपने इसे पकड़ा? देखा, रीति रिवाज, ओह, जो कि आज है। अब वे शिक्षक जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था, वे वही रूढ़िवादी थे। वे सचमुच विद्वान थे। उन्होंने वचन के शब्द को रखा, जो नियम है, बिल्कुल उन्हीं शब्दों को, ना ही एक भी बिंदु को जोड़ते घटाते या कुछ भी इसमें छोड़ते नहीं। और उनके पास अवश्य ही यह सिद्ध रूप से था। तो हम हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारे सिद्धांतों में बिल्कुल सही हो सकते हैं, इतना तक मसीह को पूरी तरह से तस्वीर से निकाल ही देते हैं। हम सच्ची वास्तविकता को पूरी तरह से निकाल कर दूर कर देते हैं। अब सो मनुष्य तक सच्चाई को पहुँचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। पाप में देह की समानता में उसे बनाया और उसने यहाँ धरती पर जन्म लिया था और हमारे पाप के लिए एक प्रायश्चितता था। उस दिन कलवरी पर चढ़ाया गया जिससे कि हमारे पापों को ले ले और हमें आजादी को देने के लिए और हमें बंदी ग्रहों से आजाद करने जिसमें हम रह रहे थे। अब मनुष्य एक कैदी है। परमेश्वर ने कहा कि एक मनुष्य एक कैदी था। तो जब तक मनुष्य के साथ कुछ नहीं हुआ होता है, अब मैं चाहता हूँ कि आप इसे पकड़ें कि ऐसी कोई बात होने से पहले, जिसे नया जन्म कहते हैं, जब कभी ये मनुष्य के लिए होता है, वो कभी भी किसी तरह से भी नहीं समझ सकता है या कभी भी परमेश्वर को नहीं समझ सकता है या उसके पास कोई भी परमेश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता है। भले ही वचन इसे बोलता है, उसका मन इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकता है, क्योंकि यह एक मनुष्य का मन है। उसके पास उसमें परमेश्वर का मन होना है जिससे कि परमेश्वर की बातों को समझे। देखा, इसलिए सारी पढ़ाई, सारे विद्यालय, सारी शिक्षा जितनी अच्छी हो सकती है होगी, फिर भी वे सच्चे मूल सिद्धांत नहीं होते हैं। अब भी परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा सुसमाचार को प्रचार करने। यह सही है, वो सुसमाचार अच्छी खबर है। यशाया 61 में आपको वचनों की ओर कौन ले जा रहा है, परमेश्वर ने वहाँ पर कहा, बोल रहा है। यशाया में असल में मसीह के आगमन के लिए बोल रहा है। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है ताकि सुसमाचार को प्रचार करूं, कि खेदित मन को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता दूं और कैदियों के लिए द्वार को खोलूं, बंधुओं को छुटकारा दूं। परमेश्वर ने मसीह को भेजा ताकि मनुष्यों के बंधुआई के द्वार को खोले जो अंधकार में बैठे हुए हैं। और यदि आप ध्यान दें, वो वर्ग जिसके लिए उसने बोला उन्हें स्वतंत्र कर रहा है, ये अनपढ़ नहीं थे या विद्वान थे, वे पढ़े लिखे थे। मसीह उन्हें आजाद करने के लिए आया था। अब इसे इसलिए ऐसा बनाता है कि छोटे बालक भी समझ जाएं। जब मसीह आया, कहता है, उदाहरण के लिए, आज आप में से हर एक जन को मृत्यु का दंड दिया गया था और आप एक कैद खाने में बैठे हुए थे, ये जानते हुए कल सुबह सूर्योदय होने पर तुम्हें मरना होगा। और आप में से बहुत जो पाप से भरे हुए हैं और परमेश्वर से दूर हैं, आज सुबह उस स्थान पर बैठे हुए हैं। बहुत से लोग जो सचमुच में अच्छे लोग हैं, वे आज सुबह उस अवस्था में बैठे हुए हैं। आप में से बहुत से यहाँ कैंसर के साथ बैठे हुए हैं, ट्यूमर के साथ, अंधेपन के साथ बैठे हुए हैं। आप में से कुछ लोग सब प्रकार की परिस्थितियों के साथ बैठे हुए हैं। अब भी परमेश्वर ने मसीह को बंदी गृह के दरवाजों को खोलने के लिए भेजा है, जिससे कि आपको आजाद करे। आप कहते हैं, क्या बीमारी एक बंधुआई है? जी हाँ, यीशु ने इसे साफ साफ समझाया जब उसने उस स्त्री से कहा जो पूरी तरह से झुकी हुई थी। उसने स्त्री को चंगा किया, अपने हाथों को उस पर रखा और वो सीधी खड़ी हो गई, और उन्होंने गलती को ढूंढना आरंभ किया, उन शिक्षकों ने किया। उसने कहा, और क्या यह उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है छुड़ाई गई, इन बंधनों से आजाद हो गई जिसे शैतान ने ऐसा किया था? तो मसीह हमारा महान छुड़ाने वाला आया है, जिससे कि पुरुष और स्त्रियों को पाप से आजाद करे और बीमारी से आजाद करे। वो जब वो कलवरी पर मरा, उसे हमारे पापों के लिए घायल किया गया था, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए थे। अब यही अच्छी खबर है, यही सुसमाचार है। सुसमाचार यह है कि मसीह पापियों के स्थान पर मरा, उस मसीह ने बीमारों के स्थान को ले लिया, मसीह ने पापियों के स्थान को ले लिया, मसीह ने चिंतित मनुष्य के स्थान को ले लिया, मसीह ने रोगी के स्थान को ले लिया, मसीह ने हर एक स्थान को ले लिया जो हमें सारी बीमारियों और हर एक पाप से आजाद करता है जो शैतान ने हम पर बंदी गृह में डाले थे। मसीह हमें क्षमा करने आया, आजाद करने, हर एक चीज से आजाद करता है। उन दिनों में जब गुलाम लोग, जब वे बंधुआई में थे और वे गुलामी में थे यहाँ राज्य में, जब अब्राहम लिंकन मरा ताकि अश्वेत लोगों को आजादी मिले, उन्हें अधिकार देने के लिए कि वे और अधिक गुलामी में न रहें, वे सूर्य उदित होने पर आजाद भी हुए थे। वो इसके लिए बहुत ही खुश थे, यह जानते हुए कि जैसे ही सूर्योदय होगा वे आजाद होने जा रहे थे। उनमें से कुछ लोग हटे कट्टे थे, शारीरिक दशा में तंदुरुस्त थे, वे ऊपर पहाड़ पर चढ़ गए, कुछ सबसे ऊपर की चोटी पर चले गए, और कुछ लोग आधे रास्ते तक ही चढ़ सके, कुछ लोग सबसे नीचे थे। और जैसे ही सूर्य हल्के से ऊपर आना आरंभ हुआ, सबसे मजबूत लोग वहाँ ऊपर चोटी पर थे। मैं आज सबसे अधिक मजबूत मसीहों को चाहता हूँ, जो पवित्र आत्मा के कार्य के अंदर उठ खड़े हो जाएं, वे जो केवल धर्मीकरण के नीचे होकर मार्ग पर आते हैं, वे जो सबसे नीचे गड़बड़ी की घाटी में हैं, वे उठ खड़े हुए, और जब वे जो ऊंचाई पर थे वे इसे सबसे पहले वहाँ जाकर देख सके। और जब उन्होंने सूर्य को उदित होते हुए देखा, उन्होंने अपनी ऊंची आवाज से चिल्लाया, वे लोग जो उनसे नीचे थे उनसे कहा, हम आजाद हैं। और फिर वे जिन्होंने इसे जान लिया और वे नीचे की ओर दूसरे लोगों को जोर से बोलने और चिल्लाने लगे, हम आजाद हैं। और शेष लोग जो उनके नीचे थे इसे दूसरों को बताया, हम आजाद हैं। अब देखना, वे लोग जो ऊपरी पहाड़ी पर सूर्य को देख सके, वे तो आजाद थे, लेकिन जैसे ही खबर उस व्यक्ति को मिली जो नीचे घाटी पर था, वो बस उतना ही आजाद था जैसे उसे हमेशा होना चाहिए। चाहे सूर्य ऊपर आया हो या नहीं आया हो, आपने इसे समझा? मसीह आया जिससे कि हमें बंधुआई से आजाद करे। आपको आदतों की बंधुआई में नहीं रहना है जो अधूरा मसीह का जीवन है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप इस तरह से रहें, वो चाहता है कि आप आजाद हो जाएं। परमेश्वर ने मसीह को आजादी प्रचार करने के लिए अभिषिक्त किया, ताकि बंदी गृह के दरवाजों को खोल दे और हर एक समय आप समझो आप वहाँ पर बैठे हुए हैं और आपको मृत्यु का दंड दिया गया है। और पहली बात जो आप जानते हैं वे आपको निश्चय ही फांसी पर लटकाने के लिए ले जाने वाले हैं या किसी और तरह से मृत्यु दंड देने वाले हैं। और पहली बात जो आप सुनते हो कि कोई तो वहाँ रास्ते पर से आ रहा है कहते हुए इसे रोक दो, मेरे पास माफी नामा है, तुम्हें मरना नहीं है। अब आप रुकते नहीं हैं जब तक आप बंदी गृह से बाहर नहीं आते हो। आप बिल्कुल ठीक उसी तरह से आजाद हैं जैसे आप बाहर आजाद होंगे। इसलिए मनुष्य जब वो बंदी गृह में बैठा है बस उसी तरह से खुश हो सकता है जैसे उसे बंदी गृह से बाहर खुश होना है। जैसे ही उसे पता चलता है उसके माफी नामे पर हस्ताक्षर को किया गया है, इसी तरह से आज सुबह भी ऐसा ही है। यहाँ है वो हर एक स्त्री और पुरुष जिनका एक भूखा हृदय है कि आज सुबह कैद खाने से बाहर आए, सुसमाचार की अच्छी खबर को प्रचार किया गया है। और कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप अब भी बीमार बैठे हुए हैं, यदि आप अब भी बंधुआई में बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल उसी तरह से आजाद हो सकते हैं क्योंकि खबर आ चुकी है, आपको क्षमा किया गया है। मसीह कुछ 1900 वर्ष पहले जी उठा, आज सुबह हर एक कैदी को आजाद करने के लिए यहाँ है। बंदी गृह के दरवाजों को खोल दिया और उन्हें बाहर निकाला। ओह क्या ही अद्भुत बात है, कोई आश्चर्य नहीं। कवि रोमांचित हो उठा जब उसने इसे सुना, उसे प्रेरणा मिली। उसने कहा जीवित रहते हुए उसने मुझे प्रेम किया, मरते हुए उसने मुझे बचा लिया, गाड़ा गया, मेरे पापों को दूर लेकर गया, हमेशा के लिए आजाद किया। किसी दिन वो आ रहा है, ओह महिमामय दिन। विश्वासी की आशा उसके दूसरे आगमन की ओर देख रही है। वो महान राजकुमार जिसने बंदी गृह के दरवाजों को खोल दिया और हमें आजाद कर दिया। कर्जा चुकाया जा चुका है, इसे पूरा भुगतान किया गया है। परमेश्वर और पापियों का एक साथ कलवरी पर मेल मिलाप हुआ था जब यीशु मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जीवित किया हमारे धर्मीकरण के लिए, कि जब हम उस ओर देखकर और इसे विश्वास करें और हमारे पूरे हृदय के साथ ग्रहण करें, हम जीवित परमेश्वर के दृष्टि में धर्मीकरण किए हुए हैं। निश्चय ही यह आपको भावुक बनाता है, निश्चय ही यह आपको आनंदित बनाता है। कैसे आप अपनी शांति को रोक पाएंगे? भला कैसे एक मनुष्य खुद को रोक पाएगा जो ये जानता हो कि उसके सामने वहाँ मृत्यु लटक रही है और वहाँ पर एक माफीनामा आता है, यह सही है। आप किस तरह से सोचते हैं उस बूढ़े बर्रब्बा ने उस सुबह महसूस किया जब उसने सुना रोमी लोग आ रहे हैं और उस बड़े गलियारे पर से जैसे बड़े बड़े लोहे के जूते पहने हुए जोर से पटकते हुए जंजीरें टकरा रही थी रास्ते पर भालों को घसीटते हुए, यह जानते हुए कि उसे मार डाला जाएगा। और जब उसने दरवाजे को खोला और बर्रब्बा कांपता हुआ और रोता हुआ खत्म होने के लिए तैयार हो रहा था कहते हुए ओह ये मेरा अंत समय है, कहा बर्रब्बा मैं पढ़ता हूँ तुम क्षमा किए गए हो, आजाद हो। क्यों? उसने कहा क्या मैं नहीं मरूंगा? नहीं तुम्हें मरना नहीं है। अच्छा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ भी नहीं। अच्छा ये ऐसे कैसे हुआ है? तब सेनापति उठ खड़ा हुआ होगा, उसकी ओर घूमते हुए कहा उस मनुष्य को उस ओर क्रूस पर लटकते हुए देखते हो? उसके चेहरे पर से उस मजाक की थूक को देखते हो? उसके हाथों पर घावों को देखते हो? वे तुम्हारे थे लेकिन उसने तुम्हारे स्थान को ले लिया है। उसने तुम्हारे लिए बंदी गृह के दरवाजे को खोल दिया है कि तुम जिसे मरने के लिए दोषी ठहराया गया था उसने तुम्हारे स्थान को ले लिया है। और ईस्टर की सुबह परमेश्वर ने हमारे धर्मीकरण के लिए उसे खड़ा कर दिया। इसलिए हम धर्मी किए गए हैं जब हम उस कहानी को विश्वास करते हैं और इसे ग्रहण करते हैं। धर्मीकरण की शांति हमारे हृदय के अंदर उतर आती है जैसे गहरे पानी की तरंगे लहराने लगती हैं। किस तरह उसका व्यक्तित्व लहराने लगता है। परमेश्वर हमें बिना सहायक के नहीं छोड़ा है। वो जानता था कि आने वाले दिनों में ये सब उलझा हुआ होगा शिक्षकों और इत्यादि के द्वारा वचन का, किस तरह से वो इसे मिलावट को करेंगे। लेकिन उसने सीधे सीधे उसके साथ एक संदेशवाहक को भेजा जो पवित्र आत्मा है जो उसके पुनरुत्थान का प्रमाणित होना है। यदि इसे प्रमाणित करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं होता तो मैं पुनरुत्थान का विश्वास नहीं कर सकता था। मेरे पास ज्ञान के सिवा कुछ भी नहीं होता या मेरे पास दिमागी विचार के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन आज हमारे पास दिमागी विचारधारा ठीक बात है, धर्मशास्त्र ठीक बात है, लेकिन हमारे पास सीधा सीधा एक गवाह है, पवित्र आत्मा, जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का एक गवाह है। इसलिए आज हमारे दिन में लोगों के द्वारा गलत समझा गया है, बहुत ही गलत समझा गया है, लेकिन ये वो आशा है। जब वो वहाँ अंतिम आज्ञा को देता है, जब उसने कहा सारी जगत में जाकर और सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो उद्धार को पाएगा, और वो जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा। जो विश्वास करे ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई भाषा में बोलेंगे, यदि वे सर्प या जहरीली वस्तुओं को उठा लेंगे इससे उनकी हानि न होगी, वे बीमारों पर अपने हाथ को रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, वही काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, वरन उससे भी बढ़कर करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। किसी ने कहा भाई ब्रैनम, क्या वो बड़ी आज्ञा इस दिन तक आ पहुँची थी? निश्चय ही, कहाँ तक? सारे संसार के लिए, कितों को, हर एक सृष्टि के लिए। आप वहीं पर हैं, इसे विश्वास करना, इसे ग्रहण करना, यह अनंत जीवन है। मुझे इसे क्यों विश्वास करना चाहिए? आप कहेंगे क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। यह सही बात है, परमेश्वर अपने खुद के वचन को वापस नहीं ले सकता है। परमेश्वर एक बार एक वचन को बोलता है, उसे उसके साथ बने रहना होता है। मैं एक शब्द को बोल सकता हूँ और इसे वापस ले सकता हूँ। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता है। जब वो एक वचन को बोलता है, उसे इसके साथ बने रहना होता है, और उसने उन वचनों को कहा, सो परमेश्वर उसके वचन का आदर करता है। और पुनरुत्थान आज एक जीवन मरण के जैसे ही है, और बिल्कुल उतना ही हर एक मानवीय हृदय के लिए सच्चा है जो इसे विश्वास करते हैं, जैसे ये मरियम मगदलिनी के लिए था और उनके लिए जो उस सुबह उस कब्र पर खड़े थे जिन्होंने उसे देखा। वो यहाँ पर है और वहाँ उसका नाम मरियम कहकर बुलाया, और उसने यहाँ वहाँ देखा और कहा रब्बानी या गुरु, बिल्कुल यही है जो आज सुबह हर एक हृदय के लिए वास्तविक है। यही वो परमेश्वर की आत्मा से फिर से जन्म लेना है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा, वैसे ही जैसे स्त्री के लिए था जो उस सुबह कब्र पर वो खड़ी हुई थी। अब आप इसे अपने खुद के मन से नहीं कर सकते हैं, आप इसे नहीं कर सकते हैं। आप जैसे एक इमारत पर कागज को रखने की कोशिश कर रहे हो, या इसे रंग पोतने की, जब परिस्थितियां बहुत ही खराब हो, जब बुनियाद दोषी ठहराई गई हो। यदि सरकार एक घर को दोषी करार कर देती है, उसकी बुनियादें सड़ गई हो, आप भला कैसे उस पर इमारत को बना सकते हैं? आप तो केवल उसे गिराने के लिए बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं आपने अंदर से कितना रंग लगाया हो, आपने इस पर कितना अच्छा कागज चिपकाया हो, आपने उसके ऊपर कितने भी नाम के तख्ते क्यों न डाले हों, आप कितने भी पवित्र स्थल पर खड़े करें, कितने क्रूस आप इस पर डालें, इसे गिरना ही है, क्योंकि बुनियाद ही गलत है, बुनियाद सड़ी हुई है, और मनुष्य उसके खुद के मानसिक सोच का तरीका आरंभ से ही गलत है। वो परमेश्वर से एक भिन्न स्वभाव का व्यक्ति है, वो कटकर अलग हुआ है, बिना आशा के, बिना परमेश्वर के, बिना दया के, और केवल एक ही बात को वो कर सकता है कि उसे आकर और मसीह को ग्रहण करना है, और तब पवित्र आत्मा अंदर आता है, और वो मन जो मसीह में था वो तुम में होता है। यीशु ने कहा वो पिता जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है। ओह प्रभु, क्या ही जाहिर करना है, क्या ही वचन है, वो पिता जिसने मुझे भेजा मेरे साथ होता है। ध्यान देना, और जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। वो केवल तुम्हें भेजेगा ही नहीं, लेकिन वो तुम्हारे साथ जाता है। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, यहाँ तक तुम में रहूँगा, संसार के अंत तक। जो कुछ परमेश्वर में था मसीह में उंडेल दिया था, और जो कुछ मसीह में था वो विश्वासी के अंदर उंडेल कर खाली कर दिया, वो कलीसिया। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, देखो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, यहाँ तक संसार के अंत तक साथ हूँ। यही वो परमेश्वर के वचन की घोषणा है, यही है जो बाइबल कहती है, यही है जो मैं विश्वास करता हूँ। और यदि हमें अकेला ही खड़ा रहना पड़ता है, खड़े रहो, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। हर एक व्यक्ति वो कहीं भी होने दो, अकेले खड़े रहना है, केवल उसके पक्के भरोसे के साथ। यह कोई भागीदारी में नहीं है, वहाँ केवल एक ही है जो आपके साथ चलेगा, और वही है जिसने इस कथन को किया, प्रभु यीशु। वही वो एक है जो घाटी में आपके साथ चलते हुए राह को बनाएगा, वो हर एक कटीली झाड़ी के पथ में से होकर और आपके कारण हर एक पहाड़ पर चढ़ेगा। अपना जुआ उसके साथ आप ले लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है और मेरा बोझ आसान है। संसार के वस्तुओं के साथ जुआ मत लेना, विभिन्न सामाजिक और संस्थाओं के साथ जुआ मत लेना। अपना जुआ सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह के साथ ले लो। यही वो विधि है जो आप कर सकते हैं। विश्वास करो और पुनरुत्थान को देखो। अब वे प्रेरित, वो भी मनुष्य ही थे जो मसीह के साथ चले थे, जिन्होंने उसके साथ संगति की, वो स्वाभाविक रूप से साथ में चले जैसे आज के मनुष्य हैं, लेकिन वे पहचानने से चूक गए वो कौन था। यीशु ने कहा वे अंधे फरीसी जन। उसने कहा ओह, तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को लेते हो ध्यान देना और उन्हें अपने रीति रिवाजों के द्वारा बेअसर बना देते हो, समझे। वहाँ पर वे थे, शिक्षक, विद्वान, सेमिनरी के विद्यार्थी, और वचन ने साफ साफ बताया कि यीशु को उसी तरह से आना है जैसे वो आया, लेकिन उनके रीति रिवाजों ने उन्हें इस तरह से नहीं सिखाया। उन्होंने इसे पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की और कहते हैं ये किसी और समय के लिए था और ये किसी और समय के लिए होगा, लेकिन परमेश्वर बिल्कुल उसी तरह से आया और आज जैसे ये तब था वैसे ही अब भी है। वे इस भाग को एक तरफ कर देते हैं और उस भाग को एक तरफ कर देते हैं और कहते हैं परमेश्वर ने ऐसा तब किया, वो अब ऐसा नहीं करेगा, यह इस दिन के लिए नहीं है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यही वो वचन है, यही है जो हम सच्चाई होने का विश्वास करते हैं, यही है जो हम सच्चाई होने के लिए ग्रहण करते हैं। वो आचरण में हमेशा ही एक सा होता है, वो सामर्थ्य में एक सा होता है, वो प्रेम में एक सा होता है, वो हर तरफ से एक समान होता है, जैसे वो तब था। अब वो कलीसिया के साथ आया है, जैसे परमेश्वर ने उसे भेजा और उसके साथ गया तो, और परमेश्वर ने उसे जिलाया। यदि परमेश्वर उसके साथ नहीं होता तो उसे तीसरे दिन पर नहीं जिलाता। इसलिए पिता जिसने उसे भेजा वो हमेशा उसके साथ था, उसके साथ कब्र में गया और तीसरे दिन पर उसे जिलाया। अब जैसे पिता ने मुझे भेजा, उसने कहा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम में रहूँगा हमेशा, संसार के अंत तक। पुनरुत्थान पर जब हमारा ईस्टर आता है, वो वहाँ पर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे परमेश्वर ईस्टर की सुबह को वहाँ पर था जब उसे मुर्दों में से जिलाया। अब उसका एक प्रतीक इसे वो लेकर आया, इससे पहले एक पुनरुत्थान हो सके वहाँ पर एक मृत्यु को होना है, क्योंकि एक बात को होना है फिर पूरी तरह जाकर और उसके बाद एक पुनरुत्थान को होने के लिए वापस आना है, इसका मतलब वापस लाना होगा। और इससे पहले मनुष्य पुनरुत्थान में मसीह के साथ जिलाए जा सके, उसे खुद के लिए मर जाना होगा, मरना होगा उसकी सारी संसारिक संबंधित बातों के लिए, मरना होगा उसकी सारी संसारिक आदतों के लिए, मरना होगा हर एक बात जो दुष्ट है, और नए सिरे से पुनरुत्थान होना है। फिर पवित्र आत्मा के लिए खाली होते हुए, अपने आप से खाली होते हुए और अंदर आना, मतलब पवित्र आत्मा अंदर आकर उस स्थान को भर देता है, फिर वो परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए अधीन हो जाता है। तब वो वैसे ही देखता है जैसे परमेश्वर देखता है, वो वैसे नहीं देखता जैसे शिक्षक देखते हैं, वो वैसे नहीं देखता है जैसे कलीसिया का सदस्य देखता है, वो वैसे देखता है जैसे परमेश्वर देखता है। उसके बाद वो देखता है कि मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तब वो उस परमेश्वर की सामर्थ को बिल्कुल वैसे ही देखता है जैसे ये तब थी, और उसकी पुरानी शारीरिक अवस्था में आप उसे पढ़ा लिखा सकते हैं, उसे चमका सकते हैं, उसे धर्म विद्या का ज्ञान दे सकते हैं, यह उसे सबसे अच्छी कलीसियाओं में रख सकता है, उसे सबसे अच्छी कुर्सियां दे सकता है, अच्छे सदस्यों को। वो कभी भी अलग नहीं होगा जब तक वो पहले मरता नहीं है, उसके बाद फिर से उसे नए सिरे से जिलाया जाता है, और वो पवित्र आत्मा जिसने उसे बुलाया है और उसे भेजा, वो उसके साथ होता है यहाँ तक युग के अंत तक होता है। आमीन। ओह, मैं जानता हूँ यह चौंकाने वाली बात है, लेकिन यही सच्चाई है। फिर यदि मसीह आज हम में था, वो उन्हीं कामों को करेगा जो उसने किए जब वो यहाँ धरती पर था। यदि आज प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठता है और हमारे मध्य में रहता है और कहता है वही काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे क्योंकि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उसके बाद प्रमाणित करने का केवल यही एक तरीका है कि वो मुर्दों में से जी उठा है या नहीं। ऐसा ही है जब कलीसिया जो ये विश्वास करती है कि मसीह अपनी उसी पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा खुद को उस कलीसिया पर प्रकट करेगा, इसे ऐसे ही होना है। दोस्तों, इसे या तो परमेश्वर का वचन होना है या यह एक भरमाने वाली किताब है। यह सही है, ये या तो सही है या तो गलत है, और ये या तो पूरी तरह से सही है या तो पूरी तरह गलत है। हर एक वचन प्रेरणा से आया है या तो उसमें से कुछ भी प्रेरणा से नहीं आया है। मैं इसे विश्वास करना चाहता हूँ। पौलुस ने कहा, मैं तुम्हारे पास लुभाने वाले शब्दों और मनुष्यों की ठग विद्या के ज्ञान के साथ कभी नहीं आया, क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया है तब आपका विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर बनेगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास परमेश्वर के सामर्थ के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए आया हूँ, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान जो आपके विश्वास को अटल करेगा। पौलुस कभी भी कुछ शिक्षा संस्था के अनुभव के साथ नहीं आया, यहाँ वहाँ से चमकाते हुए और उसमें से निकाले और जोड़ते हुए। उसने कहा, मैं केवल एक ही बात को जानकर आया हूँ, मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं केवल एक बात को जानते हुए आया हूँ, आपको पुनरुत्थान की सामर्थ का प्रचार करूँ कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। और गलतियों 1:8 में उसने कहा, यदि कोई भी दूत तुम्हें कुछ और ही प्रचार करे तो शापित हो। यह सही है। अब क्या वो जी उठा? हम आज सुबह यहाँ पर हैं इस सवाल को पूछने के लिए, क्या वो जी उठा? अब आज का सार्वजनिक समारोह कहता है सारे संसार भर में, और वे जहाँ कहीं भी जाते हैं उनमें से कुछ लोग प्रार्थना की माला के साथ जाते हैं, उन कथन को कहते हुए यह उनके ऊपर है। दूसरे लोग यहाँ वहाँ जाकर बड़ी संस्थाओं की बड़ाई करते हैं जिनसे वो ताल्लुक रखते हैं, यह उनके ऊपर है। दूसरे कुछ लोग बड़े बड़े क्रूस लगाते हैं और पियानो और उपकरण होते हैं और बढ़िया कलीसिया की इमारतें हैं और कहते हैं, देखो हमारे पास क्या है, शहर के सबसे उत्तम लोग हमारे कलीसिया में आते हैं। यह सब ठीक बात है, यह उनके ऊपर है, लेकिन मैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को छोड़ और कुछ भी नहीं जानता। या तो यह एक खलियान में हो या यह अस्बदल में हो, यह जहाँ कहीं भी होने दो, मैं आपके बीच पुनरुत्थान को छोड़ और कुछ भी नहीं जानना चाहता। मैं नहीं सुनना चाहता कि आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि आप आरंभ से ही अच्छे नहीं हैं। हम आरंभ से ही अच्छे नहीं हैं। केवल एक ही बात को मैं जानना चाहता हूँ, वो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो मनुष्य के हृदय में रहा है। फिर यदि मसीह मर गया, हाँ मरा नहीं लेकिन फिर से जीवित हुआ है, तब वो हमारे साथ है। फिर वही काम जो उसने किए थे जब वो यहाँ धरती पर था, वो उन कामों को उत्पन्न करने के लिए बाध्य है। उसके वचन के अनुसार वो है, और जब वो काम धरती पर फिर से उत्पन्न होते हैं, वही काम। अब जब वो यहाँ धरती पर था, उसने एक बड़ा चंगाई देने वाला होने का दावा नहीं किया। क्या उसने किया? उसने कहा वो एक चंगाई देने वाला नहीं था। उसने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता जब तक मैं पिता को इसे करते नहीं देखता, और पुत्र उसी प्रकार से करता है। वो बेतसदा के तालाब के किनारे से होकर गुजरा, जहाँ लोगों का बड़ा झुंड पड़ा हुआ था, अपाहिज, अंधे, लंगड़े, अविकसित, झुके हुए, मुरझाए हुए, पानी के हिलने का इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पर इमानुएल आता है, यहाँ पर यीशु आता है, सद्गुण से भरे वस्त्र। एक स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ उसके कुछ ही दिन पहले, और वो हर एक समस्त कण कण से चंगी हो गई थी। स्त्री ने उसे छुआ और दौड़कर उस भीड़ में आ गई और बैठ गई, या जो कुछ भी यह था। यीशु रुक गया और इधर उधर देखा, कहा मुझे किसने छुआ? क्यों? कहा गुरु, भीड़ की ओर देखो, हर एक जन आपको छू रहा है। उसने कहा हाँ, लेकिन मुझे कमजोरी लग रही है। उसने कहा कुछ तो हुआ है, और उसने यहाँ वहाँ लोगों की ओर देखने लगा। जब तक उसने स्त्री को पा नहीं लिया, उसने कहा अब तुम्हारे विश्वास ने उस लहू की बीमारी से तुम्हें चंगाई दी है। देखा, उसके विश्वास ने उसे छू लिया। यह कल का इशू था, यही आज का इशू है, जो हमेशा ही इशू रहेगा। जब तक एक चंगाई की आवश्यकता होगी, वहाँ चंगाई देने के लिए एक इशू ही रहेगा। जब तक बचाए जाने के लिए पापी होगा, उसे बचाने के लिए एक इशू रहेगा। यही है वो। जब वो बड़ी भीड़ के पास से होकर गुजरा, उस तरफ गया और एक मनुष्य को जो एक चटाई पर पड़ा हुआ था, उसे चंगा किया, चलकर आगे चला गया और वहाँ उसे छोड़ दिया। इसलिए यहूदियों के चेले, उन्होंने कहा, क्यों वहाँ पर देखो, उस भीड़ की ओर देखो, वो वहाँ पर क्यों नहीं गया और इसे क्यों चंगा किया, मैं इसे विश्वास करता, और इसी तरह से इत्यादि उन्होंने उससे सवाल किया। उन्होंने इस मनुष्य को सबत के दिन अपनी खाट को उठाते देखा था। उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है। देखा, वो सारी स्तुति कहाँ दे रहा है? कोई भी परमेश्वर का सच्चा आत्मा इसी बात को करेगा, ये हर समय परमेश्वर को स्तुति देगा। कहा, पुत्र अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जो मैं पिता को करते हुए देखता हूँ, वही वे काम है जो मैं करता हूँ। पिता कुछ तो करता है और वो मुझे दिखाता है और मैं इसे करता हूँ। यदि वो तब का यीशु था, इसे आज का यीशु होना है। ये सही है, वो लोगों की सभा में खड़ा हो गया और वो उनके विचारों को समझ सकता था। वो जानता था उनके साथ क्या गलत है। उसने उसके लोगों की ओर देखा बहुत सी बार और कहा, क्यों तुम अपने हृदय में सोच विचार रखते हो और कुछ अलग ही बातों को कहते हो? एक समय एक स्त्री कुएं पर उसके पास आई, उसने कहा, मुझे पानी देना। स्त्री ने कहा, क्यों, यह प्रथा अनुसार नहीं है कि आप यहूदी लोग हम सामरियों से इस तरह से मांगे? कहा, हमारा कोई व्यवहार नहीं है। कहा, लेकिन यदि तुम जानती कि तुम किससे बात कर रही हो, तो मुझसे पानी मांगती। ओह, अब स्त्री ने कहा, भला कैसे, ये कैसे हो सकता है? और उसने कहा, जाकर अपने पति को लेकर आओ। स्त्री ने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। कहा, यह सही है, तेरे 5 पति हैं। और कहा, जिसके साथ तू अब रह रही है, वो भी तेरा पति नहीं है। स्त्री ने कहा, श्रीमान, मैंने जान लिया है कि आप एक नबी हैं। स्त्री ने कहा, अब मैं जानती हूँ कि यह मसीह का चिन्ह होगा। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि जब मसीह आएगा तो हमें इन बातों को बताएगा, लेकिन आप कौन हो? उसने कहा, मैं वही हूँ जो तुमसे बात कर रहा है। आप वहीं पर हैं, यह क्या था? मसीहा का एक चिन्ह। आमीन। ध्यान देना, और वहाँ पर उन्होंने इसे गलत समझा। उन्होंने नहीं समझा इसका क्या मतलब है। इसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। उसके अद्भुत कामों और बातों ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, और आज भी ऐसा ही है। यही बातें उनके शारीरिक मन को अंधा कर देंगी, क्योंकि ये परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकते हैं। यह परमेश्वर के विरुद्ध है, ये परमेश्वर का शत्रु है। मनुष्य का मन परमेश्वर का शत्रु है। आपको अपने खुद के मानवीय मन से बाहर आना होगा और एक नए सिरे से जन्म लेना होगा पवित्र आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर के मन को आपके अंदर लेना है। तब आप उन बातों पर विश्वास कर सकते हो, फिर ये एक वास्तविक बनता है। आमीन। अब ध्यान देना, फिर जब वो यहाँ पर था, जिन कामों को उसने किया, जब वो दूर हो रहा था, उसने उसकी कलीसिया से कहा, उसके पुनरुत्थान के बाद उसने कहा, देखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, यहाँ तक संसार के अंत तक भी रहूंगा। उनकी आंखें खुल गई थी, वे इसे समझ गए। पतरस और वे लोग, इससे पहले उसके साथ एक घनिष्ठ मित्रता होने के बाद, वो उसके साथ चला था, उसके साथ बात की, और पतरस ने कहा, ओह, मैं बहुत ही निराश हूँ वहाँ इस मृत्यु के बाद, और उन्होंने उसे गाड़ दिया। मैं बहुत ही निराश हूँ, मैं सोचता हूँ मैं अब मछली पकड़ने जाऊंगा। तो चेले जो वहाँ आसपास खड़े थे और उन्होंने कहा, हम भी तेरे साथ चलेंगे, तो दूर उन्होंने उनके जाल को डाला। निराशापूर्वक विश्वासी एक समय दिमागी धर्म ज्ञान, उन्होंने स्वाभाविक रूप में एक समय विश्वास किया, लेकिन जब एक छोटी परीक्षा सामने आई, वे सब टूट गए। अब यहाँ मेरा आपको चोट पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं आपका सुधार करना चाहता हूँ। समझे, यह केवल दिखाता है कि जब एक मनुष्य के पास दिमागी विश्वास होता है, यह कहने के द्वारा, हाँ, यह परमेश्वर का वचन है, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, परमेश्वर ने आज के दिन यीशु को जिलाया, तब यही है जो आपने सब पाया है। पहले छोटी सी निराशा आपके कलीसिया में ऊपर आने लगती है, आप बहुत ही दूर बाहर होते जाते हैं। समझे, तुम उसके एक अच्छे मित्र हो सकते हो, लेकिन तुम उसे उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में नहीं जानते हो। पेंटिकॉस्टल के बाद एक बार भी प्रचारक पतरस ने ऐसा नहीं किया। उसने इस तरह से किसी भी चीज को कभी नहीं कहा। जब वे उसे खत्म करने के लिए तैयार हुए, वे उसे एक क्रूस पर लटकाने जा रहे थे, उसने कहा, मैं यहाँ तक इस तरह से मरने के योग्य भी नहीं हूँ। मेरे पैरों को ऊपर की ओर घुमाओ, मेरा सिर नीचे की ओर करो, क्योंकि मेरा प्रभु उस स्थिति में मरा, उसका सिर ऊपर था। हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं, समझे, वो उस वक्त मसीह के साथ था, लेकिन बाद में मसीह पतरस में था। उस वक्त पतरस नेतृत्व कर रहा था और पवित्र आत्मा आने के बाद फिर पवित्र आत्मा नेतृत्व कर रहा था। पतरस दृश्य में नहीं था, तब पवित्र आत्मा चला रहा था। अब यदि आपको, यदि आपके पास अच्छे सोच विचार हैं, आप बैठकर और बाइबल पर विचार करने की कोशिश करेंगे, वो किस तरह से मृत्यु में से जी उठ सका, कैसे यह चिन्ह और अद्भुत कार्य आज जगह ले सकते हैं इस बड़े विकसित सामाजिक क्षेत्र में विज्ञान जिसमें हम रह रहे हैं। आप इस पर कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, आप बस परमेश्वर से और अधिक दूर होते जाते हैं हर समय। आप कभी भी तर्क वितर्क करने के द्वारा उसे नहीं जानेंगे। परमेश्वर तर्क वितर्क से नहीं जाना जाता, परमेश्वर विश्वास से जाना जाता है। आप इसे स्वीकार करें, आप इसे विश्वास करें। आप इसे नहीं कर सकते हैं जब तक आपके अंदर कुछ होता नहीं है, तब पवित्र आत्मा अंदर आता है और आपके पास मसीह का मन होता है। ध्यान देना, उन्होंने सारी रात मछली पकड़ी और कोई मछली नहीं मिली, बहुत ही निराश हो रहे थे। अगली सुबह प्रातः सूर्य उदय होने की सभा के समय पर उन्होंने नदी के उस पार देखा और वहाँ यीशु खड़ा था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं जाना। यही वो निराशा का भाग है, वे उसे नहीं जान सके। एक रात छोटी सी पुरानी नाव बस डूबने पर ही थी वहाँ समुन्द्र पर उस तूफान में, और यहाँ प्रिय प्रभु उनकी ओर चलकर आया। उन्होंने कहा, ओह दूर हटो, यह एक भूत है, यह डरावना है, हम इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं रखना चाहते हैं। वो बात जो केवल उनको सहायता कर सकती है, वो उनके नजदीक था और वो इससे डर रहे थे। और यही बात मैं आप लोगों से आज कह सकता हूँ जिन्होंने कभी भी पवित्र आत्मा को नहीं पाया है। मैं महसूस करता हूँ कि कलीसिया के क्षेत्र में हमारा बहुत ही मजाक उड़ाया गया है। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा होने का दिखावा करते हैं, जबकि उनके पास ये नहीं होता है। ये सही है, वैसे ही आपके क्षेत्र में वहाँ पर भी ऐसे लोग होंगे, कलीसिया के सदस्य होने का दावा करते हैं पर वे नहीं होते हैं। यह सही है, इसलिए जहाँ पर भले हैं वहाँ एक बुरे हैं। इसे याद रखना, जहाँ एक नकारात्मक है वहाँ पर एक सकारात्मक है, जहाँ एक नकली डॉलर है वहाँ पर एक असली है, और जहाँ पर कोई तो होता है जो मजाक उड़ाता है और पवित्र आत्मा के होने का ढोंग करता है, वहाँ पर एक सच्चा पवित्र आत्मा होता है। यह ध्यान रखना, और यही वो चीज है जो आपको मदद करेगी, यही चीज आपको आजाद करेगी, वो चीज जो आपके बंदी गृह की आदतों से बाहर करेगी, आपको आपके डर और परेशानी के बंदी गृह से बाहर करेगी, वो चीज जो आपको कैंसर से दूर कर देगी, और यही चीज आपको फिर से जीवित सृष्टि बनाएगी, यही चीज आपको अंतिम दिनों में उठाकर खड़ा करेगी जो ठीक आपके पास खड़ी होती है। और आप जिससे डरे हुए होते हैं, डरो मत, यह वही है, यह मैं हूँ, उसने कहा, डरो मत, यह मैं हूँ। लेकिन वे इससे डर गए थे, वे इसके लिए उसके वचन को लेने से डरे हुए थे। उसने कहा, यह डरो मत, यह मैं हूँ। यीशु ने उनसे पूछा, क्या उन्हें कोई मछली मिली थी? उन्होंने कहा, नहीं। कहा, हमने सारी रात परिश्रम किया और वे किनारे पर आए और मछली को पाया, पकाया और उनके लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने जान लिया यह चमत्कार के द्वारा हुआ, यह वही था। दो और थे जब वे इमाउस के रास्ते पर चलते हुए जा रहे थे। अब ध्यान से देखना, जैसे हम समाप्त कर रहे हैं, एक दिन इमाउस के रास्ते पर पुनरुत्थान के बाद वहाँ दो जन थे, एक क्लोपास था और उसका मित्र था। आज की तरह एक सुंदर सबत की सुबह थी, वो पहला सुंदर ईस्टर। अब नजदीक से वचन की ओर ध्यान से देखें, तैयार रहें। और जब वे पहले ईस्टर की ओर ध्यान से देख रहे थे, टूटा हृदय, निराशाजनक, क्योंकि एक निराशाजनक बात हुई थी। आज यहाँ पर स्त्रियाँ और पुरुष हो सकते हैं जो इस ईस्टर की ओर ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि कुछ निराशा हुई है, कुछ तो बात ने जगह ली है। लेकिन अब ध्यान रखें, प्रभु यीशु आज कब्र से बाहर है, वो लोगों के बीच में जीवता है। बहुत बार ऐसा हुआ, जब मैं स्कूल में था, मैंने वनस्पति शास्त्र की पढ़ाई की है, मैं हमेशा ही वनस्पति शास्त्र को पढ़ा है। मेरे लिए यह पौधे का जीवन नहीं है, ये बहुत कुछ है। उसकी ओर देखना, किस तरह से पौधा बढ़ गया और सूर्य किस तरह से आता है और इत्यादि, वनस्पति शास्त्र मेरे लिए वो है जिसने इसकी सृष्टि की, जो बनाने वाला है, जिसने पौधों को बढ़ने के लिए बनाया। ओह क्या ही वो सुंदर ईस्टर के फूल हैं, उनकी ओर देखना। ओह प्रभु, वे सुंदर फूल जो चारों ओर लगे हुए रहते हैं, कोई भी उनमें से एक के चेहरे में देखकर और यह नहीं कह सकता कि कोई परमेश्वर नहीं है और वो दिमागी रूप से सही हो। और यहाँ पर वे हैं अब निराशाजनक वापस घर जाते हुए, अच्छा तो हम निकल चुके हैं, हमने सोचा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हमें वापस घर जाना होगा, फिर रास्ते की ओर वापस एमाउस के लिए। और वे साथ साथ चलकर जा रहे थे, निराशाजनक वे उनकी बातचीत सही थी, वे उसके बारे में बात कर रहे थे, तभी वो पहुंच गया। और यही वो कारण है कि वो हम में से आज बहुतों के पास नहीं पहुंचता है। हमारी बातचीत मसीह को छोड़ बहुत सी दूसरी और चीजों के बारे में होती है। हम हमेशा उस विषय पर बात करते हैं जब हम काम को पूरा करने जा रहे होते हैं या जो हम यहाँ करने जा रहे होते हैं। आपकी बातचीत मसीह पर होने दो, तभी वो वहाँ पहुँच जाता है जब तुम उसके बारे में बात करते हो, उसके बारे में बोल रहे होते हो। वे साथ साथ चल रहे थे उसके बारे में बात करते हुए, जी हाँ अब भी वे उससे प्रेम करते थे। वे नहीं जानते थे कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और बहुत से लोग जो आज सचमुच में प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, जो बाहर इन सारे संसार में हर कहीं बड़ी बड़ी कलीसियाओं में हैं, वे प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन वे सचमुच में नहीं जानते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। ध्यान देना, जब वो उनके साथ साथ गया, एक अजनबी झाड़ियों से बाहर आया और उन्हें अभिवादन किया, सुप्रभात संभवत है, और वे सब दुखी थे, टूटे हुए, कह रहे हैं, ओह मैंने उससे प्रेम किया है, मैंने उसे लाजरस के कब्र के पास खड़े हुए देखा है, जब एक मनुष्य चार दिनों से मरा हुआ था और जिसने कहा लाजरस बाहर आ, ओह वो मनुष्य भला कैसे चूक सकता है, वो भला कैसे हमें इस तरह से कभी उदास छोड़ सकता है। और अब हम लज्जित और अपमानित खड़े हुए हैं, हम वापस घर जा रहे हैं जिससे कि हम हमारे मछली पकड़ने और सुतार के काम को फिर से आरंभ करें। देखा, क्या ऐसे ही वो आज के आधुनिक मसीह नहीं है? ओह चंगाई को जगह लेने दो और वे जीत को चिल्लाने लगते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को गिरने दो और वे जीत को चिल्लाने लगते हैं। और वे जो सचमुच पवित्र आत्मा के साथ भरे हुए हैं, वे अपने जीवन की यात्रा में उसी तरह वहाँ बने रहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो अब भी शारीरिक मन के साथ चलने लगता है, थोड़ी सी निराशा ऊपर आने दो, कुछ तो गलत होने दो, और वे वहाँ दूर जाने लगते हैं, कहते हुए, खैर मैंने तो सोचा था यह सब सही है, लेकिन ओह अब इसे देखता हूँ, मैंने सोचा कि वो छोटी सी कलीसिया कभी नहीं चुकेगी, मैंने सोचा ये व्यक्ति आपने अपने मन को गलत बात पर लगाया है। समझे, अपने मन को उस पर रखो जो चूक नहीं सकता है। आपकी बातचीत आपके कलीसिया के बारे में नहीं होने दो, लेकिन आपके प्रभु के बारे में होने दो। वही वो एक है, ना ही अपने पड़ोसी के बारे में, लेकिन आपके प्रभु के बारे में हो। आपकी बातचीत उसके लिए होने दो। तब जैसे उन्होंने साथ साथ यात्रा की, बातचीत करते हुए अचानक ही एक व्यक्ति, बस एक साधारण सा व्यक्ति, वो एक बड़ा धर्मशास्त्री नहीं था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास कोई शिक्षा नहीं थी, जहाँ तक हम जानते हैं वो अपने जीवन में वो एक दिन भी विद्यालय नहीं गया, लेकिन उसके पास अब तक के रहे किसी भी व्यक्ति से बढ़कर बुद्धिमता थी। जब फरीसियों ने उसकी बुद्धिमता को देखा, उन्होंने कहा वो कौन से विद्यालय गया है, वो कहाँ से आया है, तुम्हें ये शब्द कहाँ से मिलते हैं, वो इसे कैसे करता है, हमारी शिक्षा संस्थाओं पर कभी भी नहीं आया है, वो हमारे लोगों के जैसे बात नहीं करता है, ये शब्द कहाँ से आते हैं। और वहाँ अपमानित हुए थे क्योंकि उसने उनके झुंड से संबंध नहीं रखा, उसने खुद को उनके साथ सम्मिलित नहीं किया, वो ध्यान आकर्षरी खड़ा रहा क्योंकि वो परमेश्वर था। वहाँ पर वो खड़ा था और अपने आप को ज्ञात करवाया, उसने कहा यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते तो उन कामों पर विश्वास करो जो मैं करता हूँ, वे बताएंगे कि पिता ने मुझे भेजा है। उसने कहा और मेरी पढ़ाई लिखाई, दूसरे शब्दों में इस तरह है, यदि मेरी पढ़ाई लिखाई तुम्हारी आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं करती, यदि मेरी डिग्री जो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी डिग्री मेरे शैक्षिक प्रमाण पत्र जो तुम्हारे शिक्षा संस्थाओं से नहीं है, मेरे शैक्षिक प्रमाण पत्र वो काम जो मैं करता हूँ वो पिता के हैं जिसने मुझे भेजा है, वे मेरे शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं, यही वो उत्तम शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं जिसे मैं जानता हूँ परमेश्वर के हैं, हमें उन शैक्षिक प्रमाण पत्रों से भी बढ़ कर देता है, वो काम जो मैं करता हूँ वो एक प्रमाण है कि पिता ने मुझे भेजा है, यदि ये इतना काफी नहीं है मुझ पर विश्वास करने की बजाय उन कामों पर विश्वास करो। अब उस पर ध्यान देना, ओह मैं उसे प्रेम करता हूँ। जब मैं उसे वहाँ साथ साथ चलते हुए देखता हूँ और उसने कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या बात तुम्हें इस तरह महसूस करवाती है? क्या ही सुंदर दिन है, देखो हर एक चीज कैसी दिख रही है। उसने कहा, जी हाँ, कहा मैं जानता हूँ, लेकिन हमने भरोसा किया। कहा, क्या तुम यही आसपास के एक अजनबी हो? क्यों? कहा, क्या तुम नहीं जानते कि नासरत का यीशु एक मनुष्य जो बड़े चिन्हों और इत्यादि के द्वारा परमेश्वर का अनुमोदित किया हुआ था। हम उसके पीछे 3.5 वर्षों तक चले और पिलातुस ने उसे क्रूस पर चढ़ाया और उन्होंने उसे दफना दिया, उसे कब्र में डाल दिया। क्यों? उन्होंने कहा, हमारे पास आशाएं थी कि वो एक राजा होगा, एक महान मार्गदर्शक, और अब वो वहाँ पड़ा हुआ है, कब्र में है, लेप लगा कर रखा गया और कब्र में पड़ा हुआ है। क्यों? उसने कहा, क्या तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते? ओह मैं इसे पसंद करता हूँ। उसने क्या किया? सीधे वचनों की ओर गया, जिससे कि उसके मुख्य बातों को साबित करे, और कोई भी परमेश्वर का सच्चा आत्मा वो सीधे वचन की ओर जाएगा। उसने क्या किया? वो पीछे पुराने नियम में चला गया, जो मूसा की किताब है, और मूसा के बारे में बोलना आरंभ किया और विभिन्न लोगों के बारे में कि कैसे उन्होंने कहा था कि यीशु आएगा और कैसे तकलीफों से गुजरेगा और वो क्या करेगा। उसने कहा, क्या तुम इन लेखों को नहीं जानते, वचन को? कहा, क्या तुम नहीं जानते कि वो वचन जो वहाँ पहले था वो जीवित बन चुका है? क्या तुम नहीं जानते कि मसीह को मुर्दों में से जी उठना चाहिए? और वहाँ नहीं, हम यह नहीं जानते। अच्छे लोग उससे प्रेम करते हैं, लेकिन नहीं जानते कि वो मुर्दों में से जी उठा था। वैसे ही आज भी है, वही बात आज है, बिल्कुल वैसे ही भाइयों बहनों, और होने पाए परमेश्वर आपके सबसे भीतरी भाव को जागृत करे। लोग नहीं समझते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है, वो मरा नहीं है, वो जीवित है, और वो भेष बदल कर चलने लगा। वो उन्हें एक मनुष्य के रूप में दिखाई दिया। वो हो सकता है आपको आपके पड़ोसी के रूप में दिखाई दे, वो हो सकता है वो आपको एक सेवक के रूप में दिखाई दे, या आपके माँ के रूप में मसीह आपको लोगों में दिखाई देता है। तब हर एक से सही बर्ताव करें, कृपालु बनो, मित्रवंत बने, प्रेमी बने। मसीह व्यक्ति में है, मसीह तुम्हारे अंदर महिमा की आशा है, और जैसे आप साथ साथ चलते हैं और लोग तुम्हें दिखाई देने लगते हैं, एक सज्जन व्यक्ति आपसे बात करना आरंभ करता है, उसकी सुने। तुम नहीं जानते कि हो सकता है यीशु आपसे बात कर रहा हो। देखो वो दिखाई देता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक तुम में रहूंगा, और जब तुम जो इनके लिए करते हो तुम मेरे लिए करते हो। ओह जब इसे इस तरह देखने लगते हो तो पुरानी परंपरा दूर होती जाती है, समझे? यह एक शब्दों के रूप में नहीं बनता है, और बहुत सारे शब्दों को एक साथ रखकर एक वर्णन करना नहीं है। यह एक जीवित सच्चाई बन जाती है कि मसीह अब हम में है। वो पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य में से होते हुए आगे पीछे चल फिर रहा है, हृदय में से उमड़ते हुए, जांचते हुए, वहाँ पर उसमें नाशमान जीवन को दोष लगाते हुए। और जब आप इसे स्वीकार करते हैं, वो इसे परमेश्वर के सामने रख देता है और लहू इसे धोता है। आमीन। फिर जब वे उसके साथ साथ गए, अब देखना ये संध्या के समय की ओर बढ़ रहे थे। ओह मैं अब इसे पसंद करता हूँ, हम थोड़ा और लेना चाहेंगे। ओह मैंने नहीं समझा था कि मैं इतना ज्यादा लेने वाला था। देखना ये संध्या की ओर बढ़ रहे थे, मैं बंद करूंगा। क्या आपने ध्यान दिया? अब जरा ध्यान से सुने, ये संध्या की ओर बढ़ रहे थे, और उसने इस तरह से किया जैसे कि वो उनके साथ आगे जाकर और उन्हें छोड़ देगा, लेकिन उन्होंने उसे अंदर आने के लिए मना लिया। मैं सोचता हूँ हमें कितना अधिक मनाना होगा। मैं सोचता हूँ आज ठीक अभी आप कितना अधिक ऐसा कर रहे हैं। ओ प्रभु, वो एक पुनरुत्थित हुआ है, मैं आपको राजी करूं कि आप मेरे हृदय में आएं, मेरे साथ अंदर आएं, मैं आपके ऊपर विश्वास करना चाहता हूं। मैंने एक अधूरे मसीहत के जीवन को जिया है, इसलिए मैं केवल एक ज्ञान के विश्वास के द्वारा प्रतीति कर रहा हूं और इत्यादि जो मानसिक विश्वास है, लेकिन मैं आपको आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानना चाहता हूं, क्योंकि केवल यही वो समय है मुझे तैयारी को करना होगा। मैं आपको जानना चाहता हूं, जब मैं अपने सिर को नीचे करता हूं कि फिर कभी ऊपर की ओर न उठाऊं। मैं आपको आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानना चाहता हूं। मैं इसके बारे में केवल सोचते नहीं रहना चाहता, मैं आपको जानना चाहता हूं। क्या आप मेरे अंदर आकर मेरे साथ बने रहेंगे? दिन बहुत बीत चुका है। ध्यान देना, जब वे अंदर चले गए, दरवाजों को बंद किया, उसके बाद वो उनसे बात कर सकता है। क्या ही फर्क है जो उसने इन लोगों से किया। वे नदी तट पर खड़े थे, उन्होंने उसे नहीं जाना। वे उसके साथ लंबे समय तक रहे थे, लेकिन जब मसीह एक बार अंदर होता है, मसीह बाहर नहीं है। इसे समझ रहे हैं? कहता है हाँ यह सही है, लेकिन मसीह वो अंदर है, कहता है यह सही है। आपने फर्क को समझा? मसीह अंदर है, और उसने कहा एक बार अंदर आता है, दरवाजा बंद हो जाता है, तब वो अपने आप को उन्हें प्रकट करता है। वैसे ही उसने कुछ तो किया, उसने रोटी को लिया और उसे तोड़ा, और उन्होंने देखा और कहा धरती पर केवल एक ही मनुष्य है जो कभी ऐसा कर सकता है, और यह वही है। वैसे ही उसने कुछ तो किया, ना ही उस तरह से कि वो अपने उपदेश की शिक्षा दे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे धर्मशास्त्री थे जो ऐसा करते थे, ना ही उसने उस तरह से पोशाक पहनी थी हॉलीवुड की शैली में। ऐसा तो आज होगा, ऐसा नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसने कुछ तो किया, वे जान गए कि ऐसा करने का तरीका उसी का था, और उनकी आंखें खुल गई थी, तब वे उसे जान गए। कुछ दिनों तक उन्होंने उसे नहीं जाना, या चेलों ने उसे उस तरह से नहीं देखा, वे कभी भी उसके साथ नजदीक नहीं हुए थे। उन्होंने उसे नहीं जाना जब उन्होंने उसे देखा, लेकिन वे जो एक बार उसके नजदीक गए, वे इसे जान गए कि वो उनका प्रभु था। और मैं चाहता हूँ कि आप किसी बात पर ध्यान दें, थोड़ा नजदीक से, अब बंद करने से पहले, समाप्त करने से पहले, उसी दिन पर प्रातः सवेरे, जब मरियम मगदलीनी और मार्था पहले कब्र पर थी, ध्यान देना, प्रातः उस सुबह पहले मसीह ने प्रातः जल्दी उठने वालों के बीच अपने आप को दिखाया, और बाकी पूरे दिन में उसके बाद वो कभी भी नहीं दिखा जब तक संध्या का समय न हो गया। तब उसने फिर से खुद को प्रकट किया, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा था। यह संध्या के समय उजियाला होगा, तुम निश्चय ही उसे महिमा के मार्ग पर देखोगे। जब मसीह ने अपने आप को दिन के आरंभ में प्रकट किया, प्रेरितों के साथ उस पुनरुत्थान पर चिन्ह और चमत्कारों के साथ जो पतरस, याकूब, यूहन्ना और उन्होंने किए, उसने खुद को लोगों को प्रकट किया। कैसे? उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में सुनना, चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्यों के द्वारा जो उसने किए, क्या यह सही है? उसने अपने आप को प्रकट किया। अब हम एक बड़े दिन में से होते हुए आए हैं, दिन जो बीत चुका है, महान शिक्षकों के द्वारा, संत अगस्तीन, वहाँ से होते हुए आगे मार्टिन लूथर पर आया, जॉन वेस्ली, कैल्विन, नॉक्स, वे सारे के सारे, आगे वो मेथोडिस्ट के युग में से होते हुए बैप्टिस्ट का युग, नाजरिन का युग, पिलग्रिम होलीनेस का युग, पेंटिकॉस्टल का युग, ये सारे युग बीत चुके हैं। सूरज नीचे की ओर जा रहा है। उसने कहा ये संध्या के समय उजाला होगा, वहाँ पर एक दिन होगा। नबी ने कहा ना ही वो दिन होगा, ना ही वो रात होगी, यह बस एक तरह से कोहरा सा होगा। और आज इसी तरह से संसार दौरा कर चुका है, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की पहली सुबह से लेकर, और वो वहाँ पीछे पहली कलीसिया का युग, उस इफिसियो कलीसिया युग में, वही सबसे पहला युग जिसे परमेश्वर ने खुद को चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्यों के द्वारा प्रकट किया, यह पूर्व पिताओं में धुंधला हो गया। कैथोलिक कलीसिया से लेकर आगे होते हुए सुधारकों की ओर यहाँ पर आते हुए, उनके पास इतना ही उजियाला था, विश्वास करें कि वो परमेश्वर का पुत्र था। उनके पास इतना ही उजियाला था कि उसे एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के नाई ग्रहण करें, और ये नीचे की ओर बढ़ता गया, लेकिन वे बादल, अंधकार के बादल, शिक्षकों ने लोगों को बांधे रखा, कहते हुए अद्भुत कार्यों के दिन बीत चुके हैं। ये सारी बातें बहुत वर्षों पहले खत्म हो चुकी हैं। यह एक अंधकार का दिन रहा है, पूरी तरह से अंधकार नहीं है। वे देख सकते हैं कैसे साथ साथ चलना है, लेकिन ना ही बहुत अच्छी तरह से। लेकिन भाई, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, जब वो सूरज पश्चिम क्षेत्र की ओर डूब रहा था, उस उजाले को फिर से होना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे संसार स्थिर है। यह बाइबल एक पूर्व की किताब है, इसे एक पूर्वी प्रचलन में लिखा गया है, इसे पूर्वी तरीके पूर्व की भाषा में लिखा गया है, सूरज पूर्व में उगता है यह पश्चिम में डूबता है। और पूर्वी लोगों में उनके भेंट करने का दिन पहले पुनरुत्थान में था और सूर्य सारे युगों में से होता हुआ आया है और विकसित जीवन पूर्व से आरंभ हुआ पश्चिम की ओर जा रहा है। और यहाँ पश्चिम रेखा पर सूरज डूबने से ठीक पहले ये फिर से उजाला होगा, वही पुनरुत्थित प्रभु यीशु अपनी उसी सामर्थ्य में वापस आएगा। जैसे आरंभ में उसने खुद को मरियम मग्दलीनी और उन पर प्रकट किया, जो अंतिम युग में खुद को उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में प्रकट कर रहा है। कहां पर? अंतिम समय पर। उसने कहा अंदर आओ, देर हो रही है, दिन लगभग बीत चुका है, संध्या होने पर है, क्या अंदर नहीं आओगे? और वे उसे अंदर लेकर गए और जब एक बार अंदर चला गया उसने उनकी आंखों को खोल दिया, उसने कुछ तो ऐसा कार्य किया। उन्होंने कहा इसे केवल वो ही कर सकता है। देखो वे कैसे थे, वे पूरे दिन तक चलकर वहाँ पर आए थे। यही है जहाँ शिक्षा संस्थाएं चूक गई हैं। हमने कड़ी मेहनत की है कि शिक्षा संस्थाओं को सहयोग दें कि वहाँ पर जाकर पुस्तिका बांटा करते थे। हमने वहाँ पर धर्म शास्त्र सिखाने के लिए लोगों को भेजा है और वहाँ मुद्दा, बुद्धा, मोहम्मद, सिखों को, सारे संसार के विभिन्न धर्म के लोग वहाँ पर हैं, उनके उन्हीं धर्म शास्त्रों के साथ जो मसीहत की उन्हीं बातों को एक मनोविज्ञान के तरीके से उत्पन्न कर सकती है, ये सही है। और संसार उनमें से केवल एक तिहाई लोग इस ईस्टर की सुबह के बारे में जानते होंगे या कभी यीशु के बारे में सुना होगा। संसार का दो तिहाई भाग साम्यवाद है और अंधकार में है। संसार के दो तिहाई लोगों ने कभी भी यीशु के बारे में या पुनरुत्थान के बारे में नहीं सुना है। लेकिन भाई जब इमाउस का अनुभव किलोपास को मिला, जब उनकी आंखें खुल गई थी और उन्होंने पहचान लिया कि वे कौन थे, और कुछ समय के लिए उन्होंने आगे समय के गलियारों में यात्रा की, पीछे यरूशलेम की ओर रफ्तार से चलते हुए चिंता मुक्त लोगों को बता रहे थे, हम जानते हैं हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है क्योंकि हमने उसे देखा है और जानते हैं कि वो वास्तविक है। क्या है ये? अंतिम दिन है। परमेश्वर मनुष्यों को संदेशों के साथ खड़ा करेगा, सामर्थ के साथ, छुटकारे के साथ, सुसमाचार के सामर्थ के साथ खड़ा करेगा, ताकि प्रमाणित करे कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मैं जानता हूँ ये उत्तेजित होने के जैसा लगता है, कोई आश्चर्य नहीं हम उस एक उत्तेजना के समय में रह रहे हैं। हाँ ऐसे ही है, हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, जब परमेश्वर हर एक पवित्र भविष्यवक्ता के द्वारा सारे पुराने नियम में से होते हुए नए नियम में से होते हुए भविष्यवाणी की है कि अंतिम समय में वही चीजें जो आरंभ में जगह ली थी वो अंतिम दिन में होगी। और जब अंधकार दूर हो जाएगा और सुसमाचार का उजाला धरती के हर कहीं गलियारों पर चमकेगा, एक बार फिर से प्रभु यीशु के आगमन से पहले, वो मुर्दों से जी उठा है, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा रहेगा। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और हमारे बीच रह रहा है। मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूँ। मेरा हृदय वर्णन से परे रोमांचित हो उठा है जब हम इसके बारे में अंदाजा नहीं लगाते हैं, ये सच्चाई है। दोस्तों परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप यह नहीं जानते हैं कि इस बात की ओर ध्यान ही न दें कि इस संदेश को कौन दे रहा है, लेकिन वो ध्यान दें कि संदेश का मतलब क्या है। समझे, ये आप पर है, यह मसीह से बाहर है। यदि आप उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में उसे नहीं जानते हैं, यदि आप केवल इसे मानसिक समझ से न लें, अपने धर्म शास्त्र या मानसिक विश्वास के बारे में बात न करें, यदि कोई बात आपके हृदय में गवाही नहीं देती है और आपका हृदय ढेर हो चुका है और एक खाली कब्र बन गया है, हालेलुया, संसार की पुरानी मरी चीजों से और आपके हृदय में मसीह एक नए सिरे से जी उठा है। हे परमेश्वर, आज सुबह हर एक संदेह के पत्थर को लुढ़का दीजिए, इसे दूर करें और होने पाए वो आपके हृदय में आज जी उठे और आपको एक नई सृष्टि बनाए। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो कुछ मिनटों में दृश्य पर आ जाएगा और उन्हीं कामों को करेगा जो उसने किए जब वो यहाँ धरती पर था। प्रार्थना करेंगे जब हम अपने सिरों को झुकाते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, देर हो रही है, समय बहुत निकल गया है, लेकिन यह निकलता हुआ समय ही था जब आप दिखाई दिए। हम आपका आपके दैविक वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपका इस सुसमाचार के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे हम प्रचार और विश्वास करते हैं। हम आपका इस सुसमाचार के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे आपने सच्चा होने का प्रमाण दिया है। और अब प्रभु यीशु, खोए हुए प्राणों से बात करें। यहाँ बहुत से लोग हैं प्रभु जो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में आपको कभी भी ग्रहण नहीं किया है। आप उनके साथ रोज चलते हैं। यह आप ही हैं जो दुर्घटना होने के समय पर उन्हें मरने से बचाया। ये उस दिन पर आप ही थे जिसने उस रात घर को तूफान में उड़ने से रोके रखा। यह आप ही थे जो संकट की घड़ी में उनके लिए आए। यह आप ही थे जिसने उन्हें काम दिया जब उनके पास कोई काम नहीं था। यह आप ही थे जिसने उनके हृदय को सांत्वना दी जब उनके प्रियजन कब्र में चले गए। आप उनके साथ चले हैं, लेकिन फिर भी वे आपको नहीं जानते हैं। परमेश्वर आज प्रदान करें कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है, जो मसीह से बाहर है, वे क्लोपास और उसके मित्र ने जैसा किया वैसा ही करें, अंदर आकर और हमारे साथ बने रहें। मेरे जीवन के दिन पूरी तरह बीत गए हैं, अब अंदर आकर और अपने मार्ग को बनाएं। और जबकि हमने हमारे सिरों को झुकाया है, जहाँ कहीं भी आप हैं, अंदर या बाहर, यहाँ एक व्यक्ति भी कहता है, अपने हाथ को परमेश्वर की ओर उठाते हुए, अपने भाई के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए, ओह आज सुबह कुछ तो मेरे हृदय में हो रहा है। मैं जानता हूँ कि मेरे हृदय में कुछ तो बात जगह ले रही है। मैं कभी भी वैसा ही नहीं रहूँगा। मैं विश्वास करता हूँ कुछ तो हुआ है आज सुबह जब से मैं इस इमारत में आया हूँ। मैं अब मसीह को अपने हृदय में मेरे उद्धारकर्ता की नाई ग्रहण करता हूँ। मैं अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाकर और कहना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ। यही वो सब है जिसे मैं कर सकता हूँ कि अपने हाथों को उठाऊँ आपको बताने के लिए कि मैं आप पर विश्वास करता हूँ। क्या आप अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे? परमेश्वर आपको आशीष दे श्रीमान। यह ठीक है। कोई और है? क्या अपने हाथ को ऊपर उठाकर कहेंगे, मैं अब उसे स्वीकार करता हूँ? परमेश्वर आपको आशीष दे महिला। यह बहुत अच्छा है। कोई और है? जब आप अपने हाथ को उठाते हैं, परमेश्वर ने आपको सनातन का जीवन देने की प्रतिज्ञा की है। वो जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास सनातन का जीवन होगा। वो न्याय में नहीं आएगा, लेकिन वो मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुका है। क्या अब आप अपने हाथ को उठाकर कहेंगे, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, कोई नहीं देख रहा है, केवल प्रभु यीशु और मैं? यदि आप कृपा करके केवल अपने हाथ को उठाकर कहेंगे, मैं अब उसे मेरे उद्धारकर्ता की नाई स्वीकार करता हूँ। क्या अपने प्रभु आपको आशीष दे? आपको, 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 ओह यह बहुत अच्छा है। हाथों की संख्या बढ़ती हुई। प्रभु आपको आशीष दे। यह बहुत अच्छा है। यह आपके लिए क्या करता है? आपको जीवन देता है। आपने अपने हाथ को उस गुरु की ओर उठाकर कहा है, मैं इसे विश्वास करता हूँ। यीशु ने कहा, वो जो विश्वास करता है कभी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। वो मृत्यु से पार होकर जीवन को पहुँच गया है। ठीक अभी आपके पास सनातन का जीवन है। क्या आप इसके बारे में खुश नहीं हैं? क्या कोई और भी है? इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, कोई और है जो कहे, भाई ब्रहणम, इस ईस्टर की सुबह पर मैं मसीह की उपस्थिति के प्रकट चिन्हों को देखने से पहले, यदि वो इस तरह से करेगा, मैं कुछ भी देखने से पहले, मैं अब उसे स्वीकार करता हूँ। मैं थोमा के जैसा नहीं होना चाहूँगा कि रुका रहूँ जब तक मैं उसे देख न लूँ और उसे महसूस न कर लूँ और इत्यादि, और फिर कहूँ मैं ठीक अभी उसे स्वीकार करने जा रहा हूँ। उसने कहा, उनका प्रतिफल कितना बड़ा है जिन्होंने अब तक नहीं देखा या महसूस किया है या जो कुछ भी है, लेकिन विश्वास किया है। क्या वहाँ कोई और भी है जो अपने हाथ को ऊपर उठाएगा, अंदर या बाहर? प्रभु आपको आशीष दे। और आपको, और आपको बहन, आपको परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो ठीक है, हमारे सिरों को झुकाने के साथ, हमारे स्वर्गीय पिता, आपने कहा था, वचन को प्रचार कर, समय और असमय में तैयार रह, उलाहना दे, डांट और समझा, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ। कोई और सुसमाचार प्रचार मत करो, लेकिन वो जो हमें सौंपा गया है, मसीह मरा, तीसरे दिन फिर से जी उठा वचनों के अनुसार, अब वो स्वर्गीय स्थानों में बैठा है परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति में, हमारे पाप के अंगीकार करने पर बिचवाई करते हुए। और यह उसका वचन है, वो जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास सनातन का जीवन है, और आज इस जल्दी में हुआ जो बिखरा हुआ संदेश है, बहुतों ने अपने हाथों को उठाया है, प्रभु आपने उन्हें देखा है। उन्हें देखने से आप भला कैसे चूक सकते हैं, जबकि आप हर एक चिड़िया को जानते हैं जो वहाँ राह पर होती है, आप इसे जानते हैं। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हर एक चीज को देखते हैं, आप सब कुछ जानते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। अब आपके वचन के अनुसार आपने उन्हें पाप से बचाया है, और हम आपका इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। उनका जीवन लंबा और खुशहाल होने पाए, वे उनके जीवन के सारे दिनों में आपकी सेवा में लगे रहें। आज आने वाली रात को यदि उन्हें कभी भी पानी में डुबाया नहीं गया है, वे आकर और बपतिस्मा को लें, प्रभु के नाम को लेते हुए, और आज इसी रात को पवित्र आत्मा के साथ भर जाएं, इसे प्रदान करें। प्रिय परमेश्वर, हम इसे मसीह के नाम से मांगते हैं। अब पिता, हम सभा में प्रवेश कर रहे हैं, मैं जानता हूं आपका वचन चूक नहीं सकता है। इसने कहा कि हमारे अपने ही नगर में सेवक उसके नगर में लोगों के बीच में, लेकिन प्रभु आपने ऐसा इन 10 वर्षों में यह 2 बार होने दिया, क्या आप इसे फिर से प्रदान नहीं करेंगे? यह ईस्टर है, और हमारे मन ईस्टर के विचारों पर, पुनरुत्थान पर पूरी तरह तरोताजा है। ये आज सुबह तरोताजा है, नए सिरे से उस सुसमाचार पर सुनने से इसे यहाँ 2 बार प्रचार किया गया है, और हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु। और मैंने लोगों को बताया है कि आप यहाँ पर हैं, आपने जो कहा आप थे, आप सर्वव्यापी थे, हमेशा ही रहेंगे। आप क्या अब आकर और मानव यंत्र को नहीं लेंगे, दीन जैसे कि वे हैं? प्रभु आपके दीन सेवक के आज हम में से होकर कार्य करें, जो पुरुष और स्त्रियां यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वे जिन्होंने आपको अभी स्वीकार किया है, देखें कि उन्होंने क्या किया है, कि यह कुछ झूठ नहीं है, यह प्रभु यीशु है। हे परमेश्वर, इसे प्रदान करें, क्योंकि हम इसे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ओह प्रभु, क्या आप अच्छा महसूस करते हैं? मैं अभी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ, यहाँ तक भले ही थके हुए और बाहर निकले हुए हैं, तब कैसा महिमामय वचन है। अब दोस्तों, मैं वो सब प्रचार कर सकता हूँ, मैं एक प्रकार से आज 2 बार प्रचार कर रहा हूँ, मुझे जल्दी करना होगा, कल मुझे गाड़ी चलाकर जाना है, मुझे सुबह जल्दी टेकोमा वॉशिंगटन के लिए निकलना होगा, आगे कनाडा में जाना है, और वे चाहते थे कि मैं हवाई जहाज से आऊं, जो कल वहां सभाएं होनी है, लेकिन मैं कार चलाकर जाना चाहूंगा। इसलिए अब ध्यान दें, अब मैं सब प्रचार कर सकता हूं, एक बात को मसीह कर सकता है, और सारी बातों का महत्व होगा जो मैं 1000 सालों में आपसे बोल सकता हूँ, यदि आप इसे देखने के लिए जीवित रहते हैं तो। अब मैं आपसे कुछ तो पूछना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप केवल आदर पूर्वक बने रहें। अब आप में से बहुत से लोग खड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ आप थके हुए हैं, लेकिन हमें केवल कुछ मिनट का समय देना। अब मैं ये बोल रहा, समझना, मैं नहीं कहता ऐसा होगा, मैं विश्वास के द्वारा कहता हूँ कि मैंने परमेश्वर से ऐसा करने के लिए मांगा है, और मैं उससे अभी भी मांग रहा हूँ कि वो यहाँ पर एक भेंट को दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कार्य क्षेत्र में करता है, कि जो लोग यहाँ जेफरसन मिले पर हैं, जान जाएं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। अब हमारे यहाँ ऐसा ये 2 बार हो चुका है, मैं नहीं जानता मैं भवन में इसके बाद फिर से कब वापस आऊंगा। मैं इस पुरानी छोटी कलीसिया से प्रेम करता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा अजनबी लोग नहीं है, ठीक यहाँ इस पुलपिट पर अब भी मेरे उंगलियों के निशान है, क्योंकि 12 साल से यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, अब मैं 23 वर्षों से सुसमाचार में हूँ। ओह, मैं इतना दूर तक आ गया हूँ कि मैं पीछे मुड़कर भी देखूँ, ओह मैंने बहुत कुछ देख लिया है, मैं परवाह नहीं करता लोग क्या कहते हैं, मैं जानता हूँ, जी हाँ श्रीमान, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि संसार अलग ही कहता हो, मैं जानता हूँ मैंने किस पर विश्वास किया है, और मैं यकीन करता हूँ वो इसे रखने में सक्षम है, जिसे मैंने दिन के निमित्त उसे सौंपा है। बहुत से मित्र जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इत्यादि, उनमें से कुछ लोग बाहर हैं, मेरे कुछ डॉक्टर मित्र हैं, जो कि आज भी उपस्थित होंगे। मैं एक धर्म कट्टरपंथी नहीं हूँ, मैं केवल यदि इसे लेते, यदि आप इसे कट्टरता कहते हैं, यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करना तो मैं एक कट्टरपंथी हूँ, यह सही है, मैं इसे मेरे पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। अब यहाँ मेरा दावा है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, मैं विश्वास करता हूँ। यदि वो मुर्दों में से जी उठा है, उसने कहा बिल्कुल वही काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, वरन इससे भी बढ़कर करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। और मैं यहाँ इस पुनरुत्थान की सुबह विश्वास करता हूँ, यदि परमेश्वर अभी फिर से दृश्य पर प्रकट होगा उसी रूप में जिसे आप जान सकते हैं कि यह वही है, क्या आप उसे देखना पसंद करेंगे? क्या आप क्लोपस और उनके जैसे होना चाहते हैं आते हुए? फिर यदि परमेश्वर ऐसा करेगा तो मैंने आपको सुसमाचार बताया है, तब वो सच्चा है। अब वो क्या करेगा यदि वो आज सुबह प्रकट होता है? क्या वो कह सकता, क्या आप आकर कहेंगे प्रभु क्या आप मेरा उद्धार करेंगे? वो क्या कहेगा, मैंने उसे कर दिया है जब मैं तुम्हारे लिए कलवरी पर मरा, क्योंकि यही उसका सुसमाचार है। कहते हैं क्या आप मुझे चंगाई देंगे प्रभु? वो कहेगा मैंने यह कर दिया है जब मैं तुम्हारे लिए कलवरी पर मरा। अब केवल बात जो वो कर सकता है कि वो तुम्हारे बीच में चिन्हों और अद्भुत कार्यों को दिखाए जो तुम्हें विश्वास और स्वीकार करने को लगाएगा, क्या यह सही है? अब मैं सोचता हूँ लड़कों ने आज सुबह कुछ प्रार्थना के कार्ड को बांटे हैं। बिली ने मुझे कुछ समय पहले बताया, कहा केवल कुछ समय में ही खत्म हो गए, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था वापस जाएं। वो बाद में कुछ और कार्ड के साथ आया और आते हुए समय नहीं बचा जब वो बाहर जाने लगा कि कुछ और कार्ड को लाए, तभी भाई नेविल ने गीत गाना शुरू किया विश्वास करो, और यहाँ वे दौड़ते हुए वहाँ आए और भाई वुड, और उन्होंने यह कहा क्योंकि गीतों को पहले से गाया जा चुका है और इत्यादि, इसलिए मुझे ठीक वहाँ पर पहुँचना था और बहुत से कार्ड नहीं ला पाया, शायद 50 या 100 होंगे। इसी तरह से बाहर कुछ है, शायद जितना हमसे संभव हो सकता है हम पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ आप अपने छोटे प्रार्थना के कार्ड को निकाल लें, या एक छोटा सा चौकोन कार्ड है, उस पर मेरी तस्वीर है और उसके पीछे की तरफ एक संख्या है, और मैं चाहता हूँ लोग पंक्ति को बना लें उस तरफ यहाँ और उनके लिए प्रार्थना करें, जैसे झुंड में वे जब साथ साथ आते हैं, और उनके लिए प्रार्थना करें जैसे हम कर सकते हैं। अब जब आप अपने कार्ड को बाहर निकाल रहे हैं और तैयार हो रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ ध्यान दें, यहाँ पर बहुत से ऐसे हैं जिनके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है। हो सकता है यहाँ पर 100 लोग होंगे जिनके पास प्रार्थना के कार्ड नहीं है। प्रार्थना कार्ड कोई मतलब नहीं रखता, कुछ भी नहीं, केवल एक ही चीज मायने रखती है आपके लिए, कि आपका विश्वास परमेश्वर में होना है। यीशु ने लोगों के लिए प्रार्थना की, यह सही है, और बहुत बार उनको बताया होगा कि उनके साथ क्या गलत था, लेकिन उसने कहा, कभी भी नहीं कहा मैंने तुम्हें चंगा किया है, उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। जो लोग पास आए, वहाँ पर वो अंधा बर्तिमाई सड़क पर बैठा हुआ था, वहाँ बैठा हुआ भीख मांग रहा था, यीशु चलकर जा रहा है, हो सकता है उस फाटक की ओर, उस सड़क से जहाँ पर बर्तिमाई बैठा हुआ था, वहाँ से तकरीबन अगले कोने पर ही था, और यहाँ पर यीशु नीचे आता है और वहाँ वो अंधा भिखारी उधर दीवार से लगकर बैठा हुआ है, चिल्ला रहा है, लोग जोर से चिल्ला रहे हैं, उस कट्टरपंथी से दूर हटो, आगे आओ बकवादी, तुम कोई चमत्कार करके हमें क्यों नहीं दिखाते? दूसरे कह रहे हैं होसाना होसाना, वो राजा है, दाऊद का पुत्र है, और उनमें सब अलग अलग लोग थे मिले जुले, और यीशु कलवरी की ओर बढ़ रहा है, उसका चेहरा वो उस ओर बढ़ रहा है, मैं उसे चलते हुए देखता हूँ, और उसके जवानी का जीवन केवल कुछ 30 वर्ष की उम्र का, वो बूढ़ा सा दिखता था, उन्होंने कहा वो लगभग 50 उम्र का था, लेकिन वो केवल 33 वर्ष का था, और वहाँ उसका चेहरा संसार के पापों से लदा हुआ था जो उस पर थे, और जो भी हर एक बीमारी थी उस पर लटक रही थी, और वो कलवरी की ओर बढ़ रहा था क्रूस पर चढ़ने के लिए, और वो बूढ़ा अंधा भिखारी वहाँ पर है, फटी हुई आस्तीन और जो कुछ भी है, कह रहा है दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। लोगों ने कहा नीचे बैठ जाओ, लेकिन यीशु रुक गया, पीछे मुड़ा, पीछे वहाँ दूर पीछे उस तरफ देखा और कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने। छोटी गरीब स्त्री उस पर इतना ध्यान नहीं देते, वो भीड़ के बीच दब गई थी और उनके पैरों के नीचे थी, और वहाँ पर चली गई और उसके वस्त्र को छुआ, भीड़ में से बाहर दौड़कर वापस कहीं पर तो आकर और नीचे बैठ गई। यीशु रुक गया, कहा किसने मुझे छुआ? वो पीछे की ओर मुड़ा, उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तुम अपने हृदय में क्या सोच विचार कर रही हो? कहा कुएं पर जो स्त्री थी उसने सोचा यह ऐसा था। उन्होंने तब कहा जब फिलिपुस उसके पास आया, जब वो उसकी पहली सेवकाई यीशु एक प्रार्थना की पंक्ति में खड़ा बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पर यीशु है कल का, यह यीशु होगा आज का, क्योंकि वो एक सा है। जब वो उजियाला जो वहाँ पर सुबह में था या यहाँ पर संध्या में है, वही यीशु कल और आज, देखो वो वैसा ही एक सा है। और जब यीशु वहाँ पर खड़ा था, वहाँ एक मनुष्य था जो बच गया था। वो दौड़कर और अपने मित्र से मिला जो नतनियल कहलाता था, और तो वो जाकर और नतनियल से मिला, और फिलिपुस जाकर और नतनियल से मिला, और उसने नतनियल को एक पेड़ के नीचे प्रार्थना करते हुए पाया, और वो उसके साथ वापस आया। यीशु वहाँ पर आया हुआ था, वे दर्शकों में खड़े हो गए जहाँ पर वो भी था। यीशु वहाँ पर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसने उसकी ओर देखा, कहा देखो एक इजरायली जिसमें कोई कपट नहीं है। इसलिए उसने कहा रब्बी तुम मुझे कैसे जानते हो, या आदरणीय गुरु धीरे से। उसने कहा क्योंकि इससे पहले फिलिपुस तुम्हें बुलाता मैंने तुम्हें पेड़ के नीचे देखा। क्योंकि फरीसियों ने कहा तुम लोगों ने देखा वो मनों को पढ़ने वाला है, वो एक शैतान है, वो बालजबूल है। लेकिन फिलिपुस ने क्या कहा, नतनेल ने क्या कहा, वो दौड़कर और नीचे गिर गया और कहा तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इसराइल का राजा है। उसने कहा क्योंकि मैंने तुझे ये बताया है, तुम विश्वास करते हो तुम इससे भी बढ़कर देखोगे, क्योंकि तुम एक विश्वासी हो, समझे तुम इससे भी बढ़कर देखोगे। देखा, अब यही वो आज का इशू है। अब आइए बीमार लोगों की पंक्ति को लगाएं और उनके लिए प्रार्थना करना आरंभ करें। अब आप बाहर वहाँ जो बिना प्रार्थना कार्ड के श्रोतागण हैं, मैं चाहता हूँ कि आप केवल अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। ठीक आपके स्थान पर बैठे हुए वो उसके सेवकों को पीछे की ओर मोड़ सकता है और वही बात को कह सकता है जो उसने तब कही थी। क्या आप ऐसा विश्वास नहीं करते, तो ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, किसके पास प्रार्थना कार्ड संख्या एक है। आइए देखें, अपने हाथ को ऊपर उठाएं, प्रार्थना कार्ड संख्या एक, संख्या एक, संख्या दो, यहाँ पर पंक्ति को लगाएं। अब मैं एक समय पर बस एक को ही लूंगा, क्योंकि हमारे पास खड़े रहने की कोई जगह नहीं है। संख्या दो, किसके पास कार्ड संख्या दो है, क्या आप अपने हाथ को उठाएंगे, प्रार्थना कार्ड, यहाँ पर यह महिला है। संख्या तीन, यहाँ पर आ जाएं, इस तरफ महिला। संख्या चार, किसके पास प्रार्थना कार्ड, किसके पास प्रार्थना कार्ड संख्या तीन है, मैं नहीं सोचता वो मुझे मिला है। प्रार्थना कार्ड तीन, प्रार्थना कार्ड चार, प्रार्थना कार्ड पाँच, किसके पास प्रार्थना कार्ड पाँच है, वहाँ पीछे एक महिला है, तो ठीक है। प्रार्थना कार्ड संख्या छह, संख्या सात, क्या आप इस तरफ आ जाएंगे, ठीक यहाँ पर। अब आइए चार पाँच छह सात, मैं नहीं जानता किस तरफ, आप उन्हें इस तरह से होते हुए लाएं, घूमकर मंच के ऊपर, शायद हो सकता है, तो ठीक है। थोड़ा जल्दी करें जितना आप कर सकते हैं। पियानो बजाने वाला केवल विश्वास करो बजाए, यदि आप चाहें तो। मेरे पास कोई जानने का तरीका नहीं है कौन कहां कैसे कब कौन है। अब आइए देखें हम कितने लोग खड़े हो सकते हैं, क्या आप ठीक अब साथ साथ आएंगे। यह प्रार्थना कार्ड संख्या है एक दो तीन चार पाँच छह सात, किसके पास आठ है, प्रार्थना कार्ड आठ, ठीक वहां पर पुत्र। प्रार्थना कार्ड नौ, अपने हाथ को ऊपर उठाएं, जिस किसी के पास प्रार्थना कार्ड नौ है, हो सकता है कोई बहरा हो और नहीं सुन सकता हो, अपने पास के बैठे हुए उसके कार्ड की ओर देखें। प्रार्थना कार्ड नौ, क्या अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे, नौ, क्या कोई है जो नहीं उठ सकता है, यदि आप अपाइज हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं, वे आपको ऊपर उठाएंगे। प्रार्थना कार्ड नौ, हो सकता है वे बाहर चले गए हों। प्रार्थना कार्ड दस, तो ठीक है महिला, यहाँ पर उधर। प्रार्थना कार्ड ग्यारह, वहाँ पर उस तरफ श्रीमान। प्रार्थना कार्ड बारह, यहाँ उधर श्रीमान। प्रार्थना कार्ड तेरह, तो ठीक है महिला, यहाँ उधर। प्रार्थना कार्ड चौदह, वहाँ, क्या आपके पास चौदह है। पंद्रह, उधर यहाँ महिला, यदि आप चाहती हैं, ये अच्छा है, बस आ जाएं। मैं सोचता हूँ आपको जाकर, हो सकता है सीधे घूमकर जाना होगा वहाँ नीचे, यदि आप जा सकते हैं तो वहाँ नीचे उस गलियारे पर, आप यदि आप चाहें ठीक इसमें आ जाओ बिल, कम से कम ठीक यहाँ उस गलियारे के बीच में खड़े हो जाओ तो ये ठीक है, ये अच्छा है। वहाँ उन्हें पंक्ति में खड़े, ठीक यहाँ नीचे महिला, महिला ठीक वहाँ पर नीचे प्रिय बहन, और सीधे पंक्ति में से होते हुए जाएं। आइए देखें हमारे पास कितने लोग पंक्ति में आ गए हैं। आइए बस कुछ मिनट रुकें, अब इस पर केवल एक मिनट के लिए। अब बस सच्चे श्रद्धापूर्वक बने रहें, बैठे रहें, शांति रखें, धीरे से। अब यह परमेश्वर का एक भवन है तो ठीक है, उस प्रार्थना को लें। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ठीक है। क्या हम कुछ और लोगों को डाल सकते हैं तो अच्छी बात है। प्रार्थना कार्ड मैंने कहाँ पर छोड़ा था? हाँ श्रीमान, आपका प्रार्थना कार्ड कौन सा है? 14, तो ठीक है। प्रार्थना कार्ड 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरफ से महिला, ऊपर उस तरफ से, उस तरफ से जाएं, तो ठीक है। ऐसा करने से लगभग हम बहुत से लोगों को खड़ा कर सकते हैं। उस तरफ जाए महिला, वे आपका ध्यान रखेंगे यदि आप चाहती हैं तो ठीक है। क्या कहते हैं, तो ये अच्छी बात है, ये इतना ही काफी होगा। जैसे कि हम ठीक अभी खड़े हो सकते हैं, बस इसी तरह से। क्या उस छोटी लड़की के नाक से खून बह रहा है बहन? आइए थोड़ा रुकें, कुछ मिनटों के लिए। क्या आप अपने सिरों को कुछ क्षणों के लिए झुकाएंगे? पिता, तेरे प्रिय बालक के नाम में जो प्रभु यीशु है, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस बच्चे को छुएं परमेश्वर, लोगों को रोक दीजिए, होने पाए ये अब बंद हो जाए, होने पाए आपके नाम की महिमा हो। क्योंकि हम इस बहते हुए लहू को फटकार लगाते हैं यीशु मसीह के नाम में जो परमेश्वर का पुत्र है। तो ठीक है, आइए अपने सिरों को अब झुकाए रखें। एक मिनट, प्रभु यीशु श्रोता गणों के मध्य खड़ा है। आज बहुत से लोग जो रुके हुए हैं, हम आपकी चंगाई की सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं। अब हम हमारे पूरे हृदय से मांगते हैं प्रभु कि आप उन चीजों को प्रदान करेंगे जो हमने मांगा है। इसे परमेश्वर की महिमा के लिए करें, हम यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। तो ठीक है, अब आइए श्रद्धा पूर्वक बने रहें, जितना हम बने रह सकते हैं। ध्यान रखना, मैं नहीं जानता हूँ, ये सब बस परमेश्वर की योजना में है। अब वहाँ प्रार्थना की पंक्ति में लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, भाई वुड्स वहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं उसे जानता हूँ। मैं उनके पीछे के दूसरे तीसरे व्यक्ति को जानता हूँ, तीसरे व्यक्ति को जो उसके पीछे है, मैं उन्हें जानता हूँ। मैं यहाँ बैठी हुई इस महिला को जानता हूँ, वो पहली महिला, मैं नहीं जानता उस महिला के साथ क्या गलत है, लेकिन मैं जानता हूँ वो वहाँ पर है। मैं सोचता हूँ मैं प्रार्थना की पंक्ति में लगभग कुछ हद तक लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। बहुत से यहाँ पर बाहर हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, और आप अपने आप के लिए इन बातों के लिए गवाह हो कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन यीशु मसीह आपको जानता है। क्या वो नहीं जानता? अब वहाँ कितने लोगों के पास बाहर प्रार्थना के कार्ड नहीं है और आप किसी भी तरह चंगाई को पाना चाहते हैं? अपने हाथों को ऊपर उठाएं, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ये ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो ठीक है, बिना प्रार्थना कार्ड के अब मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसा करें। यदि पवित्र आत्मा आता है और अभिषेक करता है, आप इसी ओर देखते रहें और अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। आप केवल देखते रहें और कहें, प्रभु मैं सचमुच अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। यदि आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको आपकी चंगाई को प्रदान करेगा। मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। अब इधर उधर न जाएं, सच्चे श्रद्धापूर्व बने रहें। अब आप जितना श्रद्धापूर्व बने रह सकते हैं, बने रहें। अब आइए फिर से प्रार्थना करें। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने सिरों को झुकाए रहें। यदि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, अब यह बात आपको चंगाई नहीं देती है, यह तो केवल प्रमाणित होना है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, जब उद्धार और चंगाई को उसने उसे पहले से ही कलवरी पर खरीद लिया, क्या यह सही है? कहें आमीन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कर सके, केवल कुछ तो ऐसा करता है, एक प्रकार के कुछ चिन्ह और अद्भुत कार्य को जो तुम्हें जानने को लगाएगा कि वो मुर्दों में से जी उठा है। यदि वो इसे एक बार करेगा, ये वही काम जो उसने किए थे जब वो यहाँ धरती पर था। आपको चाहिए कि उसे स्वीकार करें। क्या ये सही है? क्या आप इसे करेंगे? यदि आप करेंगे तो अपने हाथों को उठाएं। यदि वो एक काम को करेगा जैसे उसने तब किया था जब वो यहाँ धरती पर था, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? परमेश्वर आपको आशीष दे 100%। अब पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप दयावंत होंगे और अब आपकी महिमा के लिए प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आज इसे ठीक यहाँ भवन में प्रदान करेंगे ये बात हमेशा के लिए अंदर बैठ जाए कि आप मुर्दों में से जी उठे हैं। अब यीशु मसीह के नाम में मैं इस आशीष को परमेश्वर की महिमा के लिए मांगता हूँ, आमीन। अब परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए और परमेश्वर के उस सर्व सामर्थ के लिए मैं अब यहाँ हर एक आत्मा को अपने नियंत्रण में लेता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इसलिए वैसे ही करूँ जैसे आपने बताया है। और अब मैं चाहता हूँ महिला यहाँ अब बस ठीक यहाँ माइक्रोफोन के पास खड़ी हो जाए। मैं महिला को जानता हूँ, मैं सोचता हूँ इस महिला का नाम सुटन है, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ओह कॉप मुझे क्षमा करें। और मैंने स्त्री को इससे पहले देखा है तो बहन यहाँ पर कभी तो एक बार भवन में आती है और अब, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता कि इसके साथ क्या गलत है, लेकिन अब केवल एक ही तरीके से मैं ये जान पाऊंगा। ऐसा कुछ तो तरीका जो परमेश्वर मुझे बता रहा होगा, क्या यह सही है श्रीमती कॉप? कॉप तो ठीक है, कॉप क्या अब आपका ये नाम है? अच्छी बात है, तो ठीक है श्रीमती कॉप, केवल एक ही तरीके से मैं जान पाऊंगा तुम्हारे साथ क्या गलत था। यह परमेश्वर होगा जो मुझ पर इसे प्रकट करेगा, और फिर यदि वो ऐसा करेगा यह अलौकिक सामर्थ के जरिए से ही आया होगा जिसका मनुष्य जाति से संबंध नहीं है, ये दैविक सामर्थ से ही आया होगा, क्या यह सही नहीं है? और तब ऐसा करने पर क्या इससे तुम्हें विश्वास होगा कि जो मैंने उसके पुनरुत्थान के बारे में तुम्हें बताया है वो सत्य है? देखा, क्या इससे आपको विश्वास होगा दोस्तों? अब क्या हो यदि यीशु यहाँ खड़े होकर इस सूट को पहने हुए जो उसने मुझे दिया है देखा और वो यहाँ पर खड़ा था, यदि इसे अब हो सकता है महिला को पैसों की परेशानी हो सकता है उसे घरेलू परेशानी हो, उसे बीमारी की समस्या हो सकती है, मैं नहीं जानता, परमेश्वर इसे जानता है, मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। ये हो सकता है कि इसने उसके जीवन में कुछ तो गलत किया हो जिस कारण से जो भी उसकी परेशानी रही है उसके ऊपर आई हो, मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानता है, मैं नहीं जानता, लेकिन वो मुझे बता सकता है। तो यह इसी तरह से है, यीशु ने कहा मैं कुछ भी नहीं करता जब तक पिता मुझे नहीं दिखाता है, इसे इसी तरह से आना है। अब जो मैं इस महिला के लिए यहाँ जो कर रहा हूँ उसके मन को पढ़ना नहीं होगा, नहीं श्रीमान, परमेश्वर रोक देगा, परमेश्वर जानता है कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना है, स्वर्गीय परमेश्वर क्योंकि मेरा न्यायी है वो जानता है ऐसा नहीं है, यह गलत है। देखो यह महिला के मन को पढ़ना नहीं है, लेकिन यह पुनरुत्थान के सामर्थ के जरिए से होगा। यीशु मसीह उसकी कलीसिया में है, पतरस और उसकी ओर देखें जब वे वहाँ पर खड़े थे और लोगों की ओर देखा, किस तरह पौलुस और विभिन्न लोगों ने लोगों की ओर देखा और उन्होंने यकीन कर लिया कि वहाँ पर कुछ तो बातें थी जो गलत थी। यीशु कुएं पर स्त्री से बात कर रहा है, उसने बातचीत को उसके साथ जारी रखा। अब हम सब ये जानते हैं संत यूहन्ना उसका चौथा अध्याय, उसने उस स्त्री के साथ कुएं पर बातचीत की, और जब वो स्त्री के साथ कुएं पर बातें कर रहा है वो केवल उसकी आत्मा को पकड़ रहा था। पिता ने उसे बताया था कि सामरिया के रास्ते में से होते हुए जाना, वो यरीहो था जहाँ पर वो जा रहा था, वो ठीक आगे सीधे इस तरह से यरूशलेम से मार्ग था, लेकिन वो सामरिया से घूम कर गया क्योंकि प्रभु ने उसे वहाँ पर जाने के लिए कहा, और वो वहाँ कुएं पर बैठा हुआ था, चेलों को दूर भेज दिया, वो जानता था कि वो स्त्री आ रही है। जब वो पानी के घड़े के साथ आई उसने कहा मुझे थोड़ा जल देना, स्त्री ने कहा तुम्हारे लिए ये रीति के अनुकूल नहीं है कि इस तरह से मांगो, उसने कहा लेकिन यदि तुम्हें मालूम होता कि तुम किससे बात कर रही हो तुम मुझसे जल मांग रही होती थी, जो जल मैं तुम्हें देता तुम यहाँ जल भरने को नहीं आती, क्या यह सही है? फिर बाद में बातचीत थोड़ी सी आगे बढ़ने लगी, उसने अतः जान लिया उसकी असल में परेशानी कहाँ पर थी, कहा जाओ अपने पति को लेकर आओ, स्त्री ने कहा मेरा कोई पति नहीं है, कहा यह सही है, यह सही है, कहा तेरे पांच पति हैं और जो अब तेरे पास है वो तेरा पति नहीं है, उसने कहा मैं मान लेती हूँ कि तू एक भविष्यवक्ता है, मैं जानती हूँ कि जब मसीहा आएगा वो ऐसा करेगा क्योंकि वो हमें इन बातों को बताएगा, लेकिन तुम कौन हो, कहा मैं वही हूँ जो तुमसे बात कर रहा है। अब यह कल का इशू था, यह आज का इशू है। अब उसमें महिला तुम्हारे लिए केवल एक तरीका है जो मैं समझ पा रहा हूँ, किसी एक प्रकार का संपर्क होना है तुम्हारे और मेरे बीच परमेश्वर के साथ जिससे कि ये ज्ञात हो जाएगा। क्या तुमने कभी उस तस्वीर को देखा है जिसे उन्होंने खींची थी, जिसमें प्रभु का दूत मेरे पास खड़ा हुआ है, वो प्रकाश, क्या तुम जानती हो? तुमने उसमें से किसी एक को देखा है? क्या कलीसिया ने कभी आपने इसे देखा है यहाँ कलीसिया में? निसंदेह। अब यही है जिसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब हमें नजदीक करे। अब वो प्रकाश वही आग का खम्बा है जिसने इसराइल के बच्चों की अगुवाई की, जो कि यीशु मसीह था। यह सही है, वाचा का वो दूत, वो उस वक्त अलौकिक प्रकाश के रूप में था। वो देह में नीचे उतर आया था। उसने कहा, मैं परमेश्वर से आया हूँ और वापस परमेश्वर के पास जाता हूँ। थोड़ी देर रह गई है, ये संसार मुझे और न देखेगा, फिर भी तुम मुझे देखोगे। संसार अविश्वासी है, तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा संसार के अंत तक। अब प्रभु धन्य हो, और आप जानते हैं कि मैं कुछ तो बात जगह ले रही है। अब श्रोतागण के लिए मैं चाहता हूँ कि आप आदर पूर्व बने रहें, लेकिन अब वही प्रकाश, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ पर मेरे दाहिनी ओर आ रहा है। यह मेरे और महिला के बीच मंडरा रहा है। अब उसका जीवन नहीं छिप पाएगा। अब मेरी बहन, जो भी अब तुम पर है, वो तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह तुम्हारे मदद के लिए है। यही केवल वो उद्धार का मार्ग है। तुम यहाँ नहीं, तुम इस नगर में नहीं रहती हो, तुम नई एल्बनी में रहती हो, तुम नई एल्बनी में रहती हो, और तुम एक डॉक्टर के देखरेख के नीचे हो, और डॉक्टर ने तुम्हें बताया है कि यह किसी प्रकार की एक चीज है, कुछ तो गले में है, कुछ यह एक श्वास नली की बीमारी है जो तुम्हारे गले में है, और उसने तुम्हें बताया है और तुम्हें सलाह दी है कि इस देश को छोड़ दो, कि यहाँ से दूर चली जाओ। यही केवल वो तरीका है जिससे तुम चंगी हो सकती हो। क्या तुम विश्वास करती हो कि प्रभु यीशु इसे चंगा कर सकता है? आइए अपने सिरों को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, अपने हाथों को महिला पर रखते हुए, जबकि पवित्र आत्मा के अभिषेक की उपस्थिति में है, मैं इस बीमारी को निकम्मा ठहराता हूँ कि आपने इस महिला के लिए उस कलवरी पर चंगाई को दे दिया है, और मांगता हूँ कि वो आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। शांति में जाओ मेरी बहन, और परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारे साथ हो, यही मेरी प्रार्थना है। अब होने पाए, प्रभु धन्य हो। अब श्रद्धा पूर्व बने रहे, ध्यान दें, परमेश्वर में विश्वास रखें, संदेह न करें। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरफ देखें महिला। अब वो ही एक है जो हम उसकी उपस्थिति में हैं, सारी बातों को जानता है और तुम्हें उसी आरंभ से जानता है। उसने खाने के हर एक दाने को तुम्हें खिलाया है। जो भी तुमने खाया है वो तुम्हारे बारे में सब जानता है। मैं हो सकता है तुम्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर तुम्हें जानता है। वो जानता है तुम कौन हो, तुम कहाँ से हो, तुम्हारे बारे में सब जानता है, जो भी तुमने अपने जीवन में किया है, और वो ही केवल एक है जो तुम्हें चंगाई दे सकता है या तुम्हारे लिए कर सकता है जो भी तुम करने की इच्छा रखती हो। तुम जानती हो कि मैं इसे नहीं जानता हूँ, परमेश्वर ही है जो मेरे लिए इसे प्रकट करता है। क्या ये सच्चाई है? अपने हाथों को ऊपर उठाएं यदि यह सच्चाई है तो। तो ठीक है, कुछ क्षण के लिए आप इस ओर देखें, कुछ क्षण के लिए रुकना। अब हर एक जन आदर पूर्व रहे। यहाँ प्रभु का दूत खड़ा हुआ है, ठीक यहाँ पर, केवल ये वहाँ पर कुछ, ये वहाँ छोटी लड़की पर है जो ठीक यहाँ बैठी हुई है। वो छोटी लड़की वहाँ पर अपने प्रिय जनों के साथ है। वो छोटी बच्ची गले की किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है। यह एक गले की बीमारी है, टॉन्सिल की बीमारी, यह सही है, क्या ऐसा नहीं है श्रीमान? अपने हाथ को उस बच्ची पर रखें। प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में शैतान प्रदर्शित हो गया है, और मैं उस दुष्ट को डांटता हूँ जो उस लड़की को पकड़े हुए है। उसमें से बाहर आ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाई, आप बहुत दूर से आए हो जिससे कि बच्ची को लेकर आए, लेकिन चिंता मत करो, अब आप उसे घर ले जा रहे हैं। चंगाई पाकर तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है। परमेश्वर पर विश्वास रखें। तुम जेफरसन विले से भी नहीं हो, तुम जेफरसन विले से कहीं दूर रहती हो। तुम पूर्व से आई हो यहाँ पश्चिम में आते हुए, जब तुम यहाँ आई, और तुम आई हो, तुम एक सड़क से आई हो जो एक पक्की सड़क है, और तुम एक नगर से हो जो एक तरह से सड़क के सीधे हाथ की ओर बसा हुआ है। वहाँ किसी प्रकार का आसपास एक सरकारी व्यवसाय है, यह एडिनबर्ग इंडियाना है। तुम एडिनबर्ग इंडियाना से हो और तुम्हारे नाम को मैं उस पर देखता हूँ, डेंटन है, और तुम्हारा नाम डेंटन है, और तुम हृदय की तकलीफ से गुजर रही हो। चंगाई लेकर घर वापस जाओ। तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा करता है और तुम्हें ठीक करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होने पाए, तुम जाओ और चंगी हो जाओ। आमीन। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। परमेश्वर में विश्वास रखो, अपने पूरे हृदय से विश्वास करो। अब आप लोग विश्वास रखें। संदेह ना करें, केवल अब विश्वास करें। क्या उस पर विश्वास करते हैं? ओह प्रभु, यह मैं नहीं हूँ, वो है, वो पुनरुत्थित यीशु है, वो ही एक है जो यहाँ पर है और वो कर रहा है। यह वही काम है जो उसने किए, यह सही है, बिल्कुल वही काम जो उसने किए। अब महिला, तुम और मैं आज सुबह भेंट कर रहे हैं। परमेश्वर हम दोनों को जानता है। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, तुम इस बात को जानती हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें जानता है, वो मुझे जानता है, और उसका आत्मा यहाँ हमारे बीच में है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इसलिए कि यह भवन के लोग जान जाएं। तुम्हारे सारे जीवन में तुमने कभी इस तरह महसूस नहीं किया जो ठीक तुम अभी महसूस कर रही हो। यह सही है, क्योंकि तुम उसके स्वर शक्तिमान अस्तित्व की उपस्थिति में हो। क्या तुमने कभी उस प्रकाश की तस्वीर को देखा है? यह अब बिल्कुल वही है जो तुम्हें इस तरह से महसूस करवा रहा है। मैं इस समय पर अलग ही दुनिया में रह रहा हूँ। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अभी मुझे बता रहा है कि कोई तो मेरे सामने खड़ा है, और तुम ये जानती हो, यह एक प्रिय, मधुर और नम्र अनुभव हो रहा है। ये वही प्रभु यीशु है जो मुर्दों में से जी उठा। वो आत्मा के जीवन में वापस आया है परमेश्वर, और अब वो यहाँ हमारे साथ है। संसार के अंत तक वो हमारे साथ होगा। तुम एक मसीही हो, तुम एक विश्वासी हो, और तुम यहाँ पर खुद के लिए नहीं खड़ी हो, तुम यहाँ एक व्यक्ति के लिए खड़ी हो, और वो व्यक्ति तुम्हारा पति है, और उस व्यक्ति को एक तरह का घाव है। और एक और चीज है, मैं उसे देखता हूँ, वो किसी शराब खाने में शराब पी रहा है, उसे शराब की लत है, वो शराब पीता है, और अब तुम मनुष्य से छुटकारा पाने के लिए आई हो। क्या यह सही है? अब जानती हो महिला, ये बातें किसी भी मनुष्य के चित्त से दूर हैं। क्या यह सही है? यह परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया जाना है। क्या अब तुम यह विश्वास करती हो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने प्रभु यीशु को मुर्दे में से जीवित किया, और हम यहाँ पर आज पुनरुत्थान की आशीष का आनंद ले रहे हैं, मैं इसे आशीष देता हूँ जो तेरे हाथ की बनाई हुई है, और होने पाए वो उसे मिल जाए जो उसने मांगा है। मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। बहन, जाओ, जो कुछ तुमने मांगा है पालो, परमेश्वर ने इसे प्रदान किया है। आप विश्वास करते हैं? तो ठीक है श्रीमान, मेरी ओर देखो, मेरा मतलब देखो नहीं, मेरा मतलब जैसे पतरस और यूहन्ना फाटक से होकर गुजरे, जो सुंदर फाटक कहलाता था, उन्होंने कहा हमारी ओर देख। मैं सोचता हूँ हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, शायद एक दूसरे को पहली बार ही देख रहे हैं। क्या यह अब तक की हमारी पहली मुलाकात है एक दूसरे को देखने के लिए? तो ठीक है, तब हम कुल मिलाकर पूरी तरह से अजनबी हैं। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, और तुमने मुझे कभी भी नहीं देखा है, और यहाँ पर हम हैं दो मनुष्य जो जीवन में पहली बार मिले हैं। परमेश्वर हम दोनों को जानता है। क्या वो नहीं जानता है श्रीमान? वो निश्चय ही जानता है। और अब यदि वहाँ कुछ भी है जो तुमसे संबंधित है, कुछ तो हुआ है, अब हरेक जन आदर पूर्व बना रहे। यह एक महिला है जो यहाँ बैठी हुई है, प्रार्थना कर रही है, ठीक पीछे यहाँ जो कब्ज से परेशान है। महिला, एक मिनट के लिए खड़ी हो जाएं। यह सच्चाई है, क्या ऐसा नहीं है? और तुम्हारे हृदय पर धड़कन तेज हो रही है, यह कुछ नहीं लेकिन कब्ज है, इसलिए कि तुम चिंतित और परेशान हो, लेकिन तुम चंगाई पाकर घर जा रही हो। मैं तुम्हारे आसपास प्रकाश में बदलते देख रहा हूँ, जहाँ पर पहले अंधकार था। डरो मत, केवल देखो, आपको एक प्रार्थना के कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है, केवल जिस चीज की आवश्यकता है वो है विश्वास। केवल परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। महिला, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। अब जैसे ये दुष्ट आत्मा यहाँ इस हिस्से की तरफ बढ़ना आरंभ होती है, वहाँ कोई तो पुकार रहा है, प्रार्थना की गई है। मैं एक अंधकार को तेजी से एक महिला से एक पुरुष की ओर बढ़ते हुए देख रहा हूँ। यह एक दुष्ट चीज है और यह ठीक फसली के नीचे है। मैं एक निरीक्षण को कर रहा हूँ। ओह, यह एक छोटा सा व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है, उसके आँखों से आंसू बह रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, विश्वास रखें। तुम मुझे परमेश्वर का भविष्यवक्ता होने का विश्वास करते हो, तुम मुझे उसी तरह से स्वीकार करते हो। अब तुम्हारे साथ वही गलत बात है जो उस महिला के साथ है, जो वहाँ पर उस तरफ बैठी हुई है, उस अंतिम पंक्ति में ठीक मेरी ओर देख रही है, ठीक वहाँ बाहर छोटी गोल टोपी को पहने हुए है, वहाँ पर एक काली डोर है। वो महिला यहाँ इस महिला के सिर के आसपास देख रही है, सीधे मेरी ओर देख रही है, अपने हाथ को ऊपर उठाए हुए। यही है वो महिला, यह सही है, यहाँ है वो, एक से दूसरे की तरफ आ रहा है। यह दुष्ट की शक्ति है, खींचती हुई एक गहरी छाया। आप मुसीबत में हो, यह ठीक तुम्हारे यहाँ नीचे की तरफ है। यह एक पित्ताशय की बीमारी है। वो महिला उस ओर, उसे यह है, आप दोनों चंगे हो गए हैं, यीशु मसीह तुम्हें चंगा करता है। वो दुष्ट की सामर्थ छोड़ जाएगी और तुम आजाद होने जा रहे हो। आमीन। विश्वास रखें। अब जरा रुकें। पवित्र आत्मा श्रोताओं में है, लोगों के साथ वहाँ पर कार्य कर रहा है। वो महिला जो अपने हाथों को उठाए हुए है, वहाँ ठीक उसके पास महिला बैठी हुई है जिसका मैं निरीक्षण को देख रहा हूँ। उस महिला की कुछ तो आंत संबंधी नली की परेशानी है। यह सही है महिला, क्या तुम विश्वास करती हो कि परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा? तुम्हारे आंत संबंधी नली में तकलीफ है, यह सही है, तुम अपने हाथ को ऊपर उठाओ। क्या तुम यीशु को अपना चंगाई करने वाला करके ग्रहण करती हो? यीशु मसीह के नाम में, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो यहाँ पर है कि तुम्हें ज्ञात करवाए, अपनी चंगाई को यीशु मसीह के नाम में ग्रहण करें। मैं एक महिला को देखता हूँ, उसके सिर के चारों ओर कुछ तो है, यह प्रकट रूप से। ओह, वो महिला जो ठीक उसके पीछे बैठी हुई है, जो दूसरी महिला वहाँ बैठी हुई है, उसके पास किसी प्रकार का सिर दर्द है, हमेशा ही उसे सिर दर्द रहता है, मेरी ओर देख रही है। क्या तुम विश्वास करती हो महिला, वहाँ बैठी हुई एक छोटी सी भूरे बालों वाली महिला, कि परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा? क्या तुम अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हो? यह सही है, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। यह खत्म हुआ है, अब तुम घर जा सकती हो, यह तुम्हें ठीक तभी छोड़ चुका है। यदि यह सही है तो अपने हाथ को उठाएं, अपने हाथ को ऊपर की ओर हिलाएं। यदि यह सही है तो यह तुम में से चला गया है, तुम चंगी हो गई हो। ओह, प्रभु यीशु का नाम धन्य हो। आए विश्वास करते हुए, पवित्र आत्मा पंक्ति में मंडरा रहा है। ओह, क्या ही अद्भुत है, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? देखा उसने क्या किया है। काश मैं अपनी कलीसिया में वर्णन कर सकता कि यह अनुभव क्या है, यह कैसा है, अलग ही दुनिया में। आप उत्सुक होंगे कि आप सचमुच भवन में हो कि नहीं। आदर पूर्व बने रहें, श्रद्धा पूर्व बने रहें। मैं किसी को दूर, बहुत दूर से आते हुए देख रहा हूँ। यह एक स्थान में आ रहा है, यह एक मनुष्य है, वो एक देश से आता है जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं। यह वर्जीनिया है, वो संधिवात से पीड़ित है। क्या तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर तुम्हें चंगा करता है और तुम्हें ठीक करता है? क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? तुम करते हो? तुम वर्जीनिया से यहाँ संधिवात से चंगाई को पाने के लिए आए हो, क्या यह सही नहीं है? इतनी दूर से? जी हाँ श्रीमान, अब तुम चंगे हो गए हो, तुम वापस जा सकते हो और तुम्हारे हृदय की तकलीफ तुम्हें छोड़कर चली गई है। पंक्ति से घूमकर और वापस जाओ, तुम ठीक हो, परमेश्वर तुम्हें चंगा करता है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। क्या तुम विश्वास करते हो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, उसके पुनरुत्थान का अचूक प्रमाण? विश्वास रखें। अब मुझे क्षमा करें श्रीमान, मैं माफी चाहता हूं कि आपको रोके रखा। मेरा इस पर नियंत्रण नहीं है, यह मुझ पर नियंत्रण करता है। मैं इस पर नहीं, यह मुझे नियंत्रण करता है। मैं कह सकता हूं कि मैं बुरी तरह से कमजोर होता जा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं मैं किसी के तो पास हूं, एक बुरे बाल वाला मनुष्य। मैं जानता हूं कि तुम चश्मा पहनते हो, जिससे कि तुम्हारे साथ कुछ तो गलत हुआ होगा, यह तुम्हारी आंखों में हुआ होगा। लेकिन परमेश्वर तुम्हारे बारे में सब जानता है श्रीमान, यह सही है। तुम यहाँ चंगाई पाने के लिए हो, एक तुम चिंतित हो, वास्तव में परेशान हो। यह एक पौरुष ग्रंथि की समस्या की वजह से होता है, तुम्हें एक पौरुष ग्रंथि की समस्या है। यदि यह सही है तो अपने हाथ को उठाएं। और तुम्हें एक हृदय की समस्या भी है, यह सही है, तुम मानते हो। और देखो, मैंने मेरे जीवन में तुम्हें कभी भी नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारे नाम का प्रथम अक्षर ए ए मिलर है, तो ठीक है। तुम माउंट वैली में रहते हो, तुम अपने घर के रास्ते पर हो, चंगे होकर परमेश्वर आपको आशीष दे। जाओ आनंद करते हुए और विश्वास करो। श्रीमान मिल्स, यह तुम्हारे लिए आसान है। अब अवश्य ही आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हुए जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ, तुम्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर जानता है। क्या ये सही है? आप महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ जा चुका है, अब सब ठीक है। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। घर जाओ और कुशल से रहो। आप में से हर एक जन परमेश्वर के लिए हृदय जलोदर क्या चीज है, वो इसे किसी भी समय पर इसे चंगा कर सकता है। वह तुम्हें वापस कैंप बेल्सबर्ग भेज सकता है, यह जहाँ कहीं भी है। भली महिला, क्या इसे विश्वास करती हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने जीवन में तुम्हें कभी भी नहीं देखा है। मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ, लेकिन वो तुम्हें जानता है। और तुम कौन हो और तुम कहाँ से आई हो? क्या यह सही है? वो तुम्हें इसे प्रकट करेगा। क्या यह सही है? तो ठीक है, तुम इस अभिषेक पर विश्वास करती हो जो अब मुझ पर है, जो तुम्हें जानता है और तुम्हारे बारे में हर एक चीज। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। यदि मैं अपने हाथों को तुम पर रखता हूँ, क्या तुम चंगी हो जाओगी? यीशु मसीह के नाम में मैं दुष्ट को डांटता हूँ। शैतान, तू प्रदर्शित हो चुका है। तुमने इन लोगों को काफी समय तक गटर के जरिए से खींचे रखा, उस महिला में से बाहर आ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने मार्ग पर जाओ खुश होकर, तकलीफ तुम्हारे पीठ में है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें चंगा कर सकता है। क्या वो नहीं कर सकता है? तुम्हें चंगा कर सकता है। तुम विश्वास करते हो कि वो इसे कर चुका है? यदि तुम इसे पूरे हृदय से विश्वास करते हो यीशु मसीह के नाम में, जो परमेश्वर का पुत्र है, मैं इस बीमारी को डांटता हूँ। तुम जा सकते हो और कुशल से रहो। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। जाओ अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हुए। आओ, क्या तुम अपने पूरे हृदय से अब क्या विश्वास करती हो? मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तुम्हें अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन स्वर शक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जानता है, क्या वो नहीं जानता? वो तुम्हारे बारे में सब जानता है। वो जानता है कि तुम कौन हो, वो हर एक चीज को जानता है। मैं नहीं जानता, जानने का कोई जरिया ही नहीं है, लेकिन वो जानता है। लेकिन क्या तुम विश्वास करती हो कि तुम उपस्थिति में खड़ी हो, अपने भाई की उपस्थिति नहीं, लेकिन उसकी, जिसने उस महिला की ओर देखा और उसे बताया उसकी तकलीफ कहाँ थी? मैं देखता हूँ तुम्हारे और मेरे बीच एक मेज आती है और तुम इससे पीछे हट रही हो। तुम्हारी पेट की समस्या है, जिसके कारण पेट में पाचक अल्सर है। अब जाकर अपने रात्रि भोजन को खाओ। यीशु मसीह तुम्हें चंगा करता है। जाओ अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हुए। आओ जवान पुरुष, क्या तुम मुझे उसका भविष्यवक्ता होने का विश्वास करते हो? अपने पूरे मन से तुम इसे स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ, लेकिन परमेश्वर तुम्हें जानता है। क्या यह सही नहीं है? क्या तुम हृदय की तकलीफ से छुटकारा पाना चाहते हो और चंगा होना चाहते हो? तो ठीक है, अपने मार्ग पर आनंद करते हुए जाओ। तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगाई देता है और तुम्हें ठीक करता है। महिला, क्या तुम आओगी? तुम्हें भी पेट की तकलीफ थी और उस महिला ने कुछ मिनट पहले चंगाई को पाया है। जिसे पेट की तकलीफ थी, एक वास्तविक अनोखा अनुभव तुम पर आ गया। क्या ऐसा नहीं हुआ है? तुम उसी समय चंगी हो गई थी। अपने मार्ग पर जाओ और अपने रात्रि भोजन को खाओ और कुशल से रहो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ मेरे भाई, परमेश्वर तुम्हें जानता है। तुम्हारे और मेरे बीच एक काली छाया खड़ी हुई है। यह एक बीमारी है जो किसी भी बीमारी से सबसे ज्यादा लोगों को खत्म करती है। यह हृदय की तकलीफ है। तुम्हारे हृदय में एक छेद है और वे तुम्हें कहते हैं कि तुम इससे नहीं निपट सकते हो, लेकिन परमेश्वर जानता है कि तुम कर सकते हो। क्या तुम विश्वास करते हो? परमेश्वर तुम्हें ठीक अभी चंगाई देगा। यीशु मसीह के नाम में अपनी चंगाई को ग्रहण करो और इस मंच से एक चंगे मनुष्य होकर जाओ। जाओ परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए। वही गलत बात तुम्हारे साथ थी, हालांकि यह एक हृदय की घबराहट के कारण से है। तुम्हारी बीमारी है, यह सही है। अब क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम चंगे हो गए हो? तब अपने घर की ओर वापस जाओ, आनंद करते और कुशल बने रहो परमेश्वर की महिमा के लिए। यहाँ पर देखो महिला, क्या तुम विश्वास करती हो? एक मिनट रुकना, हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। लेकिन वहाँ मंच पर से एक भयानक झटका आया है, या लोगों में से जब वो महिला यहाँ चलकर आई, ओह ये सारे श्रोता गण के ऊपर है। इस ओर देखो, एक मिनट के लिए, तुम जानती हो महिला, मैंने मेरे जीवन में तुम्हें कभी नहीं देखा है। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, केवल परमेश्वर ही सिर्फ तुम्हें जानता है। लेकिन मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम पूरी तरह से परेशान हो। यह तनाव है, तुम्हें एक मानसिक रोग है और तुम हर समय चीजों को गिरा देती हो। मैं तुम्हें बर्तनों और चीजों को गिराते हुए देखता हूँ, और तुम यहाँ आने से पहले एक कुर्सी में प्रार्थना कर रही थी, एक सभा कक्ष के पास ही बैठी हुई, और तुमने परमेश्वर से मांगा, यदि तुम यहाँ पहुँच पाई और मैं अपने हाथों को तुम पर रखता हूँ, तुम चंगी हो जाओगी। यही सच्चाई है। क्या यह सही नहीं है? अपने हाथों को ऊपर उठाओ। यह ठीक है, यह एक आत्मा है, वो चीज श्रोतागढ़ के ऊपर है। वो छोटी महिला ठीक वहाँ पर बैठी हुई है, एक बाइबल की शिक्षिका वहाँ पर बैठी हुई उसी तकलीफ से गुजर रही है। शैतान तुमसे झूठ बोल रहा है महिला, तुम छुटकारे के लिए तैयार हो। वहाँ देखो, सारी इमारत में, यहाँ हर कहीं, यहाँ पर एक और बैठा हुआ है, ठीक यहाँ पर एक, वहाँ पर एक है, ठीक उस तरफ, यहाँ एक है इधर। ओह, आप में से हर एक जन जो तनाव की परेशानी के साथ है, अपने पैरों पर एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं। यदि आप चाहें तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हर एक जन अपने सिर को झुकाएं। ओ शैतान, तू दुष्ट आत्मा, तू बेनकाब हो चुका है, इन लोगों में से बाहर आ, मैं तुझे डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इन लोगों को छोड़ दे, बाहर आ। अब यहाँ पर देखो महिला, एक मिनट के लिए अब तुम आजाद हो, यह पूरी तरह से तुम में से चला गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम में से हर एक जन चंगा हो गया है? तुम लोगों में का सारा झुंड चंगा हो चुका है, दुष्ट तुम्हें छोड़ चुका है, अब तुम सच्ची शांति को महसूस करती हो, तुम अब बिल्कुल ठीक हो। अब अपने रास्ते पर जाओ, खुश होकर, आनंद करते हुए, परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद देते हुए। तो ठीक है, आओ श्रीमान, तुम और मैं एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, मैंने तुम्हें जीवन में कभी नहीं देखा है। परमेश्वर तुम्हें जानता है। यहाँ देखो श्रीमान, कुछ क्षण के लिए मेरी ओर देखें, अब श्रोतागढ़ की ओर, यहाँ एक अजनबी है, मैंने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा है, मैं उसे नहीं जानता, उसे कभी भी नहीं देखा है, परमेश्वर इसे जानता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, लेकिन मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये वही काम है जो यीशु ने किए जब वो यहाँ एक शरीर में था, जिससे कि तुम देख सको, वो ठीक आज यहाँ पर है। उसी काम को करते हुए वो मुर्दों में से जी उठा है और हमेशा के लिए जीवित है। धन्य है तुम्हारी आँखें जो इन कामों को देखती है और प्रभु यीशु पर विश्वास करती है। यह मनुष्य एक अजनबी है, मैंने उसे कभी भी नहीं देखा है और शायद उसने मुझे कभी नहीं देखा है। यदि मैंने कभी उसे देखा हो तो परमेश्वर जानता है मुझे ये याद नहीं है। उसने कहा वो मेरे लिए एक अजनबी था, लेकिन परमेश्वर उसे जानता है। यदि परमेश्वर प्रकट करेगा उस मनुष्य को जो वहाँ पर खड़ा है, जो मेरे लिए पूरी तरह एक अजनबी है, बिल्कुल वैसे ही कि उसके साथ क्या गलत है, उसके बारे में सब वो बताएगा कि उसके साथ क्या गलत है, ये जो कुछ भी है। और वो जानता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। क्या तुम मसीह को चंगाई देने वाले के नाई स्वीकार करते हो? आप में से हर एक जन इमारत का धुंधला होना और वापस आना आरंभ हो चुका है। यदि केवल आप जान जाएं वो कारण जो मैं आपसे बात कर रहा हूं मित्रों, तो आप दूसरी दुनिया के अंदर हैं, आप एक अलग ही स्थान पर होते हैं, आप पूरी तरह बहुत ही दूर समय की धारा पर हो। किसी के तो जीवन में उन्हें देखते हुए वे कौन है और वे कहां पर हैं? आप नहीं समझते हैं, मैं इसे समझता हूं। यह पूरी तरह से काम नहीं करता है क्योंकि यह स्वदेश है, यह सही है, लेकिन आप देखते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। आप समझते हैं कि मैंने आपको सत्य को बताया है। अब मेरी ओर देखें श्रीमान, एक मिनट के लिए बस उचित रूप से कि तुम और मैं प्रभु यीशु के संपर्क में आ सकें। यदि मैं उसका सेवक हूँ, यीशु ने कहा वो काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे न देखेगा। ये अविश्वासी हैं, वे वहाँ बाहर गेंद के खेलों में हैं और तैराकी और इत्यादि के लिए हैं, वे उसे कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम में रहूंगा संसार के अंत तक। फिर यदि वो मुर्दों में से जी उठा है और वो इस सुबह यहाँ पर है, और यह अभिषेक जो अब मेरे पास है, यह मेरा अभिषेक नहीं है लेकिन यह उसका है, तब तुम अपने जीवन को नहीं छिपा सकते। यदि तुम छिपाते थे तो, क्योंकि हम आत्मा की उपस्थिति के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यदि परमेश्वर मुझ पर प्रकट कर सकता है कि यहाँ तुम किस बात के लिए खड़े हो, क्या तुम अपने पूरे हृदय से इसे स्वीकार करोगे? क्या तुम इसे करोगे? तुम एक पेट की बीमारी से गुजर रहे हो, ये बिल्कुल ऐसे ही है, और इसका जो कारण है क्योंकि तुम एक इसकी वजह एक बेचैनी की अवस्था है। यह एक बेचैनी नहीं है, बाहरी तौर से बेचैनी की कंपन है। मैं देखता हूँ कि तुम एक बहुत दूर तक सोचने वाले हो। तुम हमेशा ही कुछ तो योजना को बनाते हो, पुलों को पार कर लेते हो इससे पहले तुम कभी उस तक पहुँचो। तुम जिन चीजों को करते हो वो कभी पूरी नहीं होती हैं, और तुम्हें यह पहले से ही बताया जाता रहा है, यह सही है, लेकिन ये तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि, लेकिन अब ऐसा होगा क्योंकि तुम चंगे हो चुके हो। तुम एक चंगे मनुष्य होकर घर जा रहे हो। यीशु मसीह तुम्हें चंगा कर चुका है। यीशु मसीह के नाम में जो परमेश्वर का पुत्र है, मैं हर एक दुष्ट आत्मा को डांटता हूँ जिसने इस मनुष्य को आश्रय बनाया है, और होने पाए वो मनुष्य यीशु मसीह के नाम के द्वारा शांति में जाए। आमीन। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। क्या आप विश्वास कर रहे हो अपने पूरे हृदय से? क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह ईस्टर पर जी उठा? क्या आप विश्वास करते हैं कि अब उसकी उपस्थिति यहाँ पर है? क्या आप मुझे उसके भविष्यवक्ता की नाई मेरी मानेंगे? हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है वो चंगा हो सकता है। क्या आप इसे विश्वास करते हो? तब अपने सिर को झुकाएं। स्वर शक्तिमान परमेश्वर, जीवन के लेखक, हर एक दान के देने वाले, इन श्रोता गणों के ऊपर अपनी दिव्य आशीष को भेजें। और अब जैसे आपका आत्मा मंडरा रहा है, और जो श्रोतागण यहाँ इस बीमारी में हैं, मैं हर एक अशुद्ध आत्मा को डांटता हूँ, हर एक दुष्ट को जिसने बीमार लोगों को बांध कर रखा है। मसीह यहाँ पर है जिसने दरवाजों को खोलकर और बंधुओं को आजाद कर दिया है, और उनमें से हर एक जन आजाद है क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और यहाँ आज अपने आप को प्रमाणित करता है। शैतान लोगों में से बाहर आ यीशु मसीह के नाम में। और आइए अब हर एक जन जो विश्वास करता है, मैं परवाह नहीं करता कि क्या बीमारी है, तुम जो वहाँ पर बैसाखी पर हो, खड़े हो जाओ। हर एक जन खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, और कुशल और चंगे हो जाएं।